ओम शांति। कभी भी किसी परिस्थिति में आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपको जॉब नहीं मिल रही है तो पुनः पुनः आप उसके लिए प्रयासरत रहें। देखिए, मनुष्य अपनी हार से बहुत ज्यादा सीखता है। यदि आपने कई इंटरव्यू दिए हैं और आपको सफलता नहीं मिली है तो भी आप निराश न हो, बहुत होपफुल हो जाएं अपने जीवन में, अपने भविष्य के लिए बहुत ही होपफुल हो जाएं। आपको याद रहे, आपके संकल्प ही आपके भविष्य के निर्माता हैं। यदि आप बार बार निगेटिव संकल्प करेंगे तो उससे निगेटिव एनर्जी उत्पन्न होगी जो आपको निगेटिविटी की ओर ले चलेगी, असफलता की ओर ले चलेगी। इसलिए आज से आप अपने मन में ऐसे संकल्प करने लगे कि आज नहीं तो कल जो मुझे मिल ही जाएगी। हर युवा को एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद से जब तक उसे जॉब मिलती है, बीच में ही कुछ समय इस तरह की मनोस्थिति से गुजारना पड़ता है। आप हिम्मत और साहस के साथ कदम बढ़ाएं। आपके परिवार के लोग, आपके मित्र लोग यदि आपको बार बार ऐसा कहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, हमने बहुत धन खर्च किया आपको पढ़ाने के लिए, हमने आपके लिए ये किया है, आप क्यों नहीं जल्दी नौकरी पा लेते हो, तो ये सब सुनकर भी आप अपने को निराशा के अंधकार में कदापि न ले जाएं। अपने मन की खुशी को कभी न खोएं। याद रखेंगे, आपके मन की खुशी, मन की पॉजिटिविटी, सुंदर विचार आपको इस क्षेत्र में सफलता अवश्य दिलाएंगे। मैं आपको एक छोटी सी सबकॉन्शियस माइंड के प्रयोग की विधि बता रहा हूँ। जब आप सवेरे उठें, पहले तो कोशिश करें जल्दी उठें, और जैसा मैं कह आया हूँ, आप अपनी खुशी को नष्ट न होने दें। थोड़ा जल्दी उठकर इस तरह के संकल्प करें, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मुझे एक अच्छी जॉब अवश्य मिल जाएगी। एक विजन अपने मन में बनाएं। कहीं से भी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आया हो, विजन बनाएं, ये जॉब मुझे मिलनी ही है। फुल कॉन्फिडेंस अपने मन में आप कर दें तो आपको इस फील्ड में बहुत सफलता हो जाएगी। हिम्मत, उमंग और उत्साह से जीवन की यात्रा में चलना, ऐसे गलत क्षणों को जिसमें मनुष्य एक अनिश्चितता की स्थिति में जीवन जीता है कि पता नहीं क्या होगा, मेरा भविष्य कैसा होगा, मुझे जॉब कब मिलेगी, मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, अच्छी मिलेगी या कैसी मिलेगी, ऐसे क्षणों में बहुत हिम्मत के साथ आपको आगे बढ़ना है। मैं ये भी आपको राय दूंगा कि जॉब की क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार निश्चित रूप से आप जॉब तलाश रहे होंगे, लेकिन एक काम अवश्य करें, कोई भी जॉब आपको मिल रही हो, चाहे वो छोटे लेवल की हो, उसे आप स्वीकार कर लें। उसे स्वीकार करने से आपका मन शांत हो जाएगा और तब आप दूसरी जॉब को प्राप्त करने के लिए मानसिक रूप से बहुत समर्थ, सबल हो जाएंगे, पावरफुल हो जाएंगे। याद रखेंगे, आपके जीवन की खुशी, आपके सुंदर विचार निरंतर आपको प्रगति के पथ पर आगे ले चलेंगे। इसलिए निराश कभी ना हो, मुझे जॉब मिलेगी नहीं ये संकल्प निकाल दें, आज नहीं तो कल बहुत जल्दी मुझे एक सुंदर जॉब मिल जाएगी, ऐसे आत्मविश्वास के साथ आपको आगे बढ़ना है तो अवश्य सफलता आपके चरण चूमेगी। ओम शांति। आपका इंटरव्यू होने जा रहा है आज, कल, परसों। आपको मानसिक रूप से उसकी बहुत सुंदर तैयारी करनी है। प्राय कैंडिडेट्स के साथ क्या क्या होता है कि वो अगर एक दो बार इंटरव्यू में फेलियर हो गए हैं तो उनके मन में एक निराशा रहती है, उनके मन में ऐसे विचार उठते रहते हैं कि आजकल तो पैसे वालों का जमाना है, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो देने को कुछ नहीं है, मेरे पास तो किसी बड़े आदमी की अप्रोच भी नहीं है, कोई मिनिस्टर, एमएलए, एमपी भी मेरे पीछे नहीं है, तो शायद मेरा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। तो ऐसे ऐसे विचार कई बार कई योग्य व्यक्तियों के मन में भी उभरने लगते हैं। आपको इनसे सावधान रहना है। हमने ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स भी देखे जो अपनी एजुकेशन के फील्ड में बहुत इंटेलिजेंट रहे, लेकिन नौकरी पाने में उन्हें बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा, इंतजार करना पड़ा, क्योंकि उनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी। उनके मन में एक विशेष तरह का भय छुपा हुआ था, तो जब भी वो इंटरव्यू देने जाते थे नर्वसनेस उनके अंदर आ जाती थी। पहले ही ऐसे विचार आ जाते थे कि मेरा सिलेक्शन तो होगा ही नहीं। मेरे पास ऐसे बहुत युवाओं के सुंदर सुंदर अनुभव भी हैं। उन्हीं के आधार से जैसे युवकों ने इंटरव्यू के दौरान सफलता को प्राप्त किया, उनके अनुभव के आधार से मैं आपको कुछ सुंदर युक्तियां, कुछ सुंदर तरीके बताना चाहूंगा। पहले तो आप बहुत निर्भय हो जाएं, बिल्कुल अपने अंदर से किसी भी तरह के विचार निकाल दें कि सिलेक्शन होगा या नहीं। आप थोड़ी देर के लिए ऐसे विचार कर लें, सिलेक्शन हो या ना हो मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है, मैं निश्चिंत होकर इंटरव्यू में जाऊंगा, एक चीज। दूसरी चीज आपकी अपनी प्रिपरेशन के बारे में। आप कभी भी ऐसे विचार न करें कि पता नहीं क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, ये चीज मन में डर पैदा करती है, पता नहीं कितने लोग बैठे होंगे। तो कई लोग इंटरव्यू देते समय बहुत ही डर जाते हैं, उनको अगर उत्तर आता भी है तो वो उसको ठीक रीति से पुटअप नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपको पुनः एक सबकॉन्शियस माइंड की विधि बता रहा हूँ जो मैंने बहुत सारे युवकों से, कैंडिडेट से कराई है, और जैसा मैंने देखा है हर व्यक्ति को तुरंत सफलता प्राप्त हुई है। वो ये है, आपको मालूम हो कि जब सवेरे हम उठते हैं थोड़ा जल्दी सूर्य उदय होने से पूर्व हम उठते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड पहले 10 मिनट तक फुल्ली एक्टिव रहता है। उस समय हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत बड़ी पावर होती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड दूसरों के सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा रहता है। इस पावर को आप प्रयोग करेंगे। मैं आपको एक छोटी सी विधि बता रहा हूँ। सवेरे आँख खुलते ही आप अपने अंदर ये विचार करें, मैं भगवान का बच्चा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान का बच्चा हूँ, इसलिए मैं शक्तिशाली हूँ। बिल्कुल एक्सेप्ट करें इसको, फील करें, आई एम नॉट वीक, आई एम वेरी पावरफुल। इसको हम अपनी लैंग्वेज में एक बहुत सुंदर शब्द देते हैं, गॉड इज ऑलमाइटी, आई एम मास्टर ऑलमाइटी, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। इस गुड फीलिंग में आकर आप दूसरा संकल्प दें, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मुझे सफलता मिलनी ही है। अपने संकल्प को पावरफुल कर दें, आज के इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन निश्चित है। बाकी सब तरह के निगेटिव विचार अपने मन से हटा दें कि मैंने पैसा नहीं दिया, मेरे पास किसी की अप्रोच लगवाने के लिए नहीं है। इन सभी विचारों को कि पता नहीं क्या होगा, क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये सब विचार अपने मन से हटाकर एक बहुत सुंदर विचार ले लें। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आज के इंटरव्यू में मेरे से वही प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका उत्तर मुझे आता है, और मेरा सिलेक्शन निश्चित है। इन संकल्पों को सवेरे कम से कम 5 बार आप अपने मन में रिपीट कर लें, ताकि ये अंतर मन की गहराई तक चले जाएं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, आपके अंदर जो फियर बसा हुआ था वो समाप्त हो जाए, और आप पूरी तरह से निर्भय होकर इंटरव्यू को फेस करेंगे तो निश्चित रूप से मन चाहा रिजल्ट आपके सामने आएगा। मेरे पास ऐसे सैकड़ों युवकों के अनुभव हैं जो इंटरव्यू से घबराए हुए थे, और मैंने जब उनको ये विधि बताई तो उनको भी आश्चर्य हुआ कि सचमुच वही प्रश्न पूछे गए जो उनको आते थे। और बहुतों के साथ तो ये हुआ, साथ साथ ही उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। इसलिए आप निराश न हो, अपने भाग्य के प्रति निराश न हो, ये न सोचते रहे मेरा तो भाग्य खराब है, मुझे तो पता नहीं कब जॉब मिलेगी, कब मैं सफलता को प्राप्त करूंगा। बिल्कुल विश्वास कर लें, भगवान की दुआएं और आशीर्वाद भी आपके साथ है। आप कॉन्फिडेंस के साथ फेस करेंगे इंटरव्यू को तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ऑल द बेस्ट, हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ, आप अपने अगले इंटरव्यू में संपूर्ण सफलता को प्राप्त करेंगे। Thank you. पहुंचाती हैं। मनुष्य जब जीवन में बार बार फेलियर हो जाता है तो कहीं कहीं उसकी हिम्मत समाप्त हो जाती है, निराशा उसके चारों ओर घूमने लगती है और वो सोचने लगता है कि शायद असफल होना ही मेरे भाग्य में लिखा है। आपके साथ यदि ऐसा हो गया है तो आपको पुनः संभलना है। मैं एक बहुत अच्छी बात आपको कह रहा हूँ। देखिए, भाग्य का सूर्य तो अंधकार में ही उदय होता है। आपके चारों ओर अगर अंधकार है तो भी आप घबराएं नहीं, जल्दी वो समय आएगा जब आपके श्रेष्ठ भाग्य का सूर्य अवश्य उदय होगा। मनुष्य को सदैव ही पॉजिटिव होना चाहिए, पर यह भी सत्य है कि बार बार असफल होने के बाद अच्छे से अच्छे व्यक्ति का भी मनोबल समाप्त हो जाता है। हमारे पास मनोबल एक बहुत बड़ी चीज है। हम अपने सुंदर संकल्पों से अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, तो आप निराश न हो। याद रखेंगे, इन असफलताओं से आप सीख अवश्य लें। निराश होने की बजाय अच्छा विचार है कि असफलताएं आपकी टीचर हैं। वो आपको कुछ सिखाना चाहती हैं, आपको कुछ गिफ्ट देना चाहती हैं, उन्हें आप स्वीकार कर लें। मुकाबले बस इसके कि हर बार की हुई असफलता आपको निराश करे, आपके मन को निगेटिव करे, जीवन के प्रति आप में उदासी आ जाए, नकारात्मकता आ जाए, आप कुछ सीखने लगे। एक बहुत सुंदर बात जो स्वयं भगवान ने भी सिखाई है वो ये है कि हर अकल्याण के पर्दे के पीछे कुछ न कुछ कल्याण छुपा होता है। देखिए, जीवन में कुछ अकल्याणकारी बातें होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको हम देखना भी नहीं चाहते, अपने जीवन में घटित होते भी देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन हम याद रखें कि हर अकल्याण के पीछे कहीं ना कहीं कल्याण छुपा हुआ है। समय आएगा और हमें वो कल्याण दिखाई दे जाएगा। हमने देखा कई स्टूडेंट एक दो बार फेल हो गए, निराश तो हुए, लेकिन तीसरी बार जब वो सफल हुए तो उनकी बौद्धिक क्षमता बहुत बढ़ गई थी और पूरे भविष्य में उस बौद्धिक क्षमता ने उनको बहुत मदद की। अगर वो पास होते रहते तो वो कमजोर विद्यार्थी रहते और वो अपने उज्जवल भविष्य की कल्पना कभी नहीं कर पाते। तो बिल्कुल, ये तो नेचुरल सी बात है कि बार बार फेलियर होना, किसी भी मनुष्य को ऐसा लगता है कि ये उसका बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आप कुछ ना कुछ अवश्य करते रहें, अच्छी चीज करते रहें, ताकि उन घटनाओं का इफेक्ट आपके ऊपर ना हो। मैं आपको एक छोटी सी राय दूंगा कि सत साहित्य का अध्ययन आप अपने जीवन में चालू रखें, चाहे रोज आप 15-20 मिनट ही उसके लिए दें। इससे आपके विचारों पर अच्छा प्रभाव पड़ता रहेगा। आज के समाज में ये एक विडंबना सी हो गई है कि लोग टीवी पे ध्यान देते हैं, इंटरनेट खोल के बैठ जाते हैं और कुछ साधनों से कुछ देखते सुनते हैं, परंतु सुंदर विचार उनको कहीं से मिल नहीं पाते, उनको कोई साहस की बातें सुना नहीं पाता, उनकी निराशाओं को कोई आशाओं में बदल नहीं पाता। ये सब काम होगा सत साहित्य से। यद्यपि हमारे वर्तमान समाज में, हमारे देश में या संपूर्ण विश्व में जो भी कुछ छपता है, जो प्रिंट मीडिया है या और मैगजीन्स, पत्र पत्रिकाएं जो छपती हैं, वो मनुष्य को सुंदर विचार बहुत कम दे पाती हैं। पर हमारा प्राचीन साहित्य श्रेष्ठ विचारों से भरपूर है, जिसके प्रचार प्रसार की आजकल बहुत कमी है। परंतु ऐसी कुछ पुस्तकें, चाहे वो मनोविज्ञान से संबंधित, चाहे प्राचीन काल के इतिहास से संबंधित, चाहे पौराणिक गाथाओं से संबंधित, आपको अवश्य मिल जाएंगी। आप एक नियम बना लें कि थोड़ा समय 15-20 मिनट भी उनका अध्ययन करें। और अगर आप स्पिरिचुअलिटी में विश्वास रखते हैं तो भगवान के महावाक्यों का अध्ययन करें। भगवान जो इस समय स्वयं सत्य ज्ञान दे रहे हैं उस पर ध्यान दें, उसको पढ़ें, तो आपके मन में आई हुई निराशा जल्दी समाप्त हो जाएगी। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आपके साथ भगवान भी है। इस सत्य को आप स्वीकार कर लें और आप क्या करें, रोज सवेरे जब उठें, सूर्योदय से पूर्व उठें और लगभग 10-15 मिनट आप अपने मन को सुंदर विचारों से चार्ज करें। मैं यहाँ ये चार्ज शब्द प्रयोग कर रहा हूँ, जैसे हम अपने मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हैं, अपने लैपटॉप को चार्ज करते हैं, ऐसे ही हम अपने मन को भी चार्ज करें। और ये चार्जिंग होगी मन के सुंदर विचारों से। थोड़ा भगवान से बात करने की विधि सीख लें, उससे बात करें, सवेरे सवेरे अपने मन को खुशी से भरें, सवेरे सवेरे अपने मन को उत्तम विचारों से भरें, कुछ एनर्जेटिक संकल्पों से भरें, कुछ ऐसे विचारों से भरें जो आपको पावरफुल बनाते हैं, तो सवेरे के इन विचारों का प्रभाव सारे दिन पर पड़ेगा, आपकी सफलता पर पड़ेगा, आप जो कुछ कर रहे हैं उसको एक नई दिशा मिलेगी। आज के समाज में चाहे एजुकेशन कितनी भी उन्नत हो चुकी है, लेकिन मनुष्य को कुछ ऐसी चीजों का ज्ञान उसमें बिल्कुल नहीं दिया जाता जिससे वो अपने जीवन को सुंदर बना सके। तो मैं वही आपको बता रहा हूँ, सवेरे उठकर 10-15 मिनट चाहे आप कुछ अच्छा अध्ययन कर लें, बाहर खुली हवा में घूम लें, प्रकृति के सानिध्य में आएं और अपने मन में सुंदर विचार इस तरह के क्रिएट करें, मैं तो भगवान का बच्चा हूँ, वो प्यार का सागर है, मेरे पास भी प्यार का खजाना है, मैं तो उस भगवान का बच्चा हूँ जो सबका भाग्य विधाता है, तो मेरा भाग्य भी उसके हाथ में है, भगवान के बच्चों का भाग्य खराब नहीं हो सकता, मैं तो उसका बच्चा हूँ जिसे लोग सर्वशक्तिवान कहते हैं, तो मेरे पास भी बहुत सारी शक्तियाँ हैं, मुझे उनको यूज करना है, तो मेरा सुंदर भाग्य है, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। मैं आपको एक सिंपल सी विधि रख रहा हूँ सामने, इन विचारों के साथ खुले आकाश के नीचे जाकर आप खुले मन से संकल्प करें, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। 5 बार कर लें, मैं बहुत सुखी हूँ, सफलता तो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, भगवान मुझे साथ दे रहा है, मैं श्रेष्ठ भाग्य का धनी हूँ, भगवान की कृपा मुझ पे बरस रही है, कदम कदम पर मुझे सफलता अवश्य प्राप्त होगी, मेरा भविष्य एकदम उज्जवल होगा। इस तरह के संकल्प आप अपने मन में क्रिएट करें तो आप देखेंगे आपके संकल्प एक सुंदर एनर्जी क्रिएट करेंगे। सवेरे 10 मिनट हमारा सबकॉन्शियस माइंड जागृत होता है जब हम आंख खोलते हैं, उसके बाद 10 मिनट तक, और वो इन सुंदर विचारों को एक्सेप्ट कर लेता है और वैसी एनर्जी वो क्रिएट करता है और ये एनर्जी हमारे भविष्य का निर्माण करती है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आपका ये असफल होना अब जल्दी ही सफलता के द्वार आपके जीवन में खोलेगा, यही आपके लिए वरदान बन जाएगा और आप निश्चित रूप से एक उज्जवल भविष्य की ओर चलेंगे। काले बादल जो आपके जीवन में आए हैं वो हट जाएंगे। हम सबकी ये सद्भावना आपके लिए है कि आप अपने जीवन में सफलता का हार आपके गले में पड़े, कदम कदम पर सफलता आपके चरण चूमे, आप अपने जीवन को संपूर्ण सुखी बना पाए और आपके भाग्य का सूर्य सदा ही विश्व गगन में चमकता रहे। ओम शांति। ओम शांति। आजकल बहुतों को ये अनुभव होता है, विशेषकर युवकों को, यंगस्टर्स को, कि एक विशेष समय पर, सारे दिन में भी एक विशेष समय पर उनको लोनली फीलिंग होती है। उन्हें लगता है अपना इस संसार में कोई नहीं, अपनी सुनने वाला कोई नहीं, अपने को समझने वाला कोई नहीं है। ये जनरेशन गैप के कारण भी होता है। मैंने बहुत युवकों से बात की तो देखते हैं किसी को शाम को 4 बजे, किसी को दिन में 2 बजे, ये लोनली फीलिंग्स होती है। जब उसका मन एक उदासी से भर जाता है, उसको कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती, उसको जीवन के प्रति एक विशेष तरह का वैराग, अनाशक्ति जैसी हो जाती है कि ये मेरा जीवन कैसा है। खुशी हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी दौलत है, जिसके पास ये खुशी का खजाना है वो सचमुच बहुत भाग्यवान है। मैं युवकों को कहूँगा कि जिनको भी ऐसी लोनली फीलिंग्स होती हैं, मैं जानता हूँ बहुतों को होती हैं, बहुत थोड़े लोग हैं जिनको ऐसा नहीं होता है, वो अपने अंदर सुंदर विचारों का निर्माण शुरू करें। एक थोड़ी सी जरूरत है अपनी दिनचर्या को रिसेट करने की। कई लोगों को आदत पड़ गई है बहुत देर से सोना, फिर बहुत देर से उठना, उठते ही लोनली फीलिंग्स होंगी। अगर आप थोड़ा जल्दी उठेंगे, कुछ सुंदर विचारों का निर्माण अपने मन में करेंगे, तो आप पाएंगे आपके सुंदर विचार आपके सर्वश्रेष्ठ साथी हैं। अगर आपकी मनोस्थिति अच्छी होगी तो आपको कोई अच्छा फ्रेंड भी अवश्य मिल जाएगा। वैसे आप जानते हैं कलयुग में अधिकतर फ्रेंड्स स्वार्थी होते हैं, सेल्फिश होते हैं बहुत ज्यादा, बस कुछ कारणों से फ्रेंडशिप रखते हैं, कारण पूरे होते ही फ्रेंडशिप समाप्त हो जाती है। ऐसी लोनली फीलिंग्स के युवकों में और कई कारण होते हैं, कुछ चीजों का ब्रेक हो जाना, जिससे वो प्यार करते थे वो उनसे दूर चले जाएं, माँ बाप का भी अच्छा सहयोग न मिले, फ्रेंड्स भी उनको अलग अलग कर दें। लेकिन सच्चे मित्र आप अपने स्वयं हैं, सच्चे मित्र आपके श्रेष्ठ कर्म हैं, और सबसे सुंदर विचार तो आपके सर्वोत्तम बहुत प्रिय मित्र होंगे। और यदि आप इन सब से भी ऊपर उठना चाहें तो भगवान भी आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है, गॉड फ्रेंड, खुदा दोस्त, वो आपका एक बहुत अच्छा साथी बनकर साथ निभाता है। हमारे पास भी लाखों युवक आते हैं और हम देखते हैं परमात्मा साथ के अनुभव के कारण उनकी लोनली फीलिंग्स समाप्त हो गई है। तो मैं आपको कुछ अच्छी बातें कहना चाहता हूँ, कुछ अच्छे साहित्य का अध्ययन आप अवश्य रखें। आजकल जो कुछ आपको इंटरनेट से या टीवी आदि से मिल रहा है वो आपके लिए पर्याप्त नहीं है। हो सकता है वो आपकी आंतरिक प्यास को बुझाने वाला ही न हो, क्योंकि उनसे केवल आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आंतरिक सेटिस्फेक्शन नहीं। तो भगवान को अपना फ्रेंड बना लें। कोई अच्छा फ्रेंड भी आप चुनकर अपने पास रखें, जिससे आप अपने मन की बात को शेयर कर सकें। कुछ अच्छे म्यूजिक, कुछ अच्छे सॉन्ग्स भी आप चुन के रखें, जिनको ऐसे समय पर आप सुन सकें, आपको ये बिल्कुल स्पष्ट पता हो कि इस समय मुझे लोनली फीलिंग होती है। वो सदा नहीं रहती है, वो एक विशेष टाइम होता है, उसे आप नोट कर लें और उस टाइम को पास करने के लिए कुछ अच्छी चीजें आप अपने पास रख लें। अगर आपने वो 10 मिनट भी व्यतीत कर दिए, पास कर दिए, तो आपका वो जो बैड टाइम, मैं इसे कहूंगा, जो लोनली फीलिंग्स देता है, वो पास हो जाएगा। तो कुछ अच्छे गीत, कुछ अच्छा म्यूजिक, जिसमें भी आपका शौक हो, बहुत अच्छी आपको रुचि हो, वो चीज आप करने लगे, तो आपकी लोनली फीलिंग बहुत जल्दी समाप्त हो जाएंगी। और जीवन में ये छोटा ही पीरियड होता है जिसमें मनुष्य को ऐसी बुरी फीलिंग से गुजरना पड़ता है। हमारे पास तो स्पिरिचुअल नॉलेज के आधार से हम भगवान से बात कर सकते हैं, जो हमारा सच्चा दोस्त है। आप भी ये कला सीख लें, भगवान को अपना सच्चा मित्र बना लें, मन का मीत लें और मन की सारी बातें उसे बताने लगें, मन की हर उलझन का समाधान उससे लेने लगें, तो बहुत सारी गुड फीलिंग्स उसकी ओर से आपको आने लगेंगी, उसके सुंदर वाइब्रेशंस आपको प्राप्त होने लगेंगे और वो समय आपका बहुत सुंदर स्थिति में बीत जाएगा। कुछ ही दिन ऐसा अभ्यास करने के बाद आपकी ये लोनली फीलिंग सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आप सुंदर विचारों के द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा और मनुष्यों से जिससे भी आपको प्रेम है, कोई आपसे प्रेम करते हैं, उसमें आप भी ध्यान रखें, उनको भी ध्यान दिलाएं कि इस सात्विक प्रेम में ये बिल्कुल प्योर लव होना चाहिए, जिसमें सेल्फिश मोटिवेशन का कहीं कोई स्थान न हो। तो वो प्रेम आपको बहुत सुख प्रदान करेगा, प्रेम आपकी इनर फीलिंग्स को बहुत सुखदायी बना देगा, वो प्रेम आपकी इनर पावर्स को बढ़ाने वाला हो जाएगा, आपको डिप्रेस या लोनली फीलिंग देने वाला नहीं होगा। तो संकल्प करें, जीवन बहुत सुंदर परमात्मा की गिफ्ट है, हमें इसको एंजॉय करना है। लोनली फीलिंग्स में, ऐसी वैसी मन की स्थिति में इस सुंदर समय को हमें व्यतीत नहीं करना है, क्योंकि हमारा वर्तमान का हर मोमेंट हमारे फ्यूचर को अफेक्ट करता है। अगर वर्तमान हमारा बहुत सुंदर है, हमारे वर्तमान में विचार बहुत सुंदर हैं, वर्तमान में हम बहुत अच्छे कर्म करते हैं, वर्तमान में हम अपने बिहेवियर को बहुत सुंदर रखते हैं, तो ये हमारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए भी हमें अपनी लोनली फीलिंग्स से मुक्त हो जाना चाहिए, ऊपर उठ जाना चाहिए। कभी भी आपको ऐसा होने भी लगे तो आप एक छोटा सा काम तो तत्काल करेंगे कि उस स्थान को चेंज करें, कुछ कार्य में लग जाएं, कुछ लोगों से मिले जुले, और नहीं कुछ है तो बाजार में जरा वॉक कराएं, कुछ अच्छी चीजें आपको सुनने मिलेगी और आपकी वो निगेटिव फीलिंग समाप्त हो जाएगी। आप उन मोमेंट्स को बहुत हैप्पी मोमेंट्स के रूप में, बहुत एंजॉयबल मोमेंट्स के रूप में अनुभव कर पाएंगे। ओम शांति। मनुष्य का जीवन एक बहुत सुंदर गिफ्ट है भगवान की। हम विचार करें कि इस जीवन को हम सुखपूर्वक व्यतीत करें, इसको हम एंजॉय करें। आजकल बड़े हो या छोटे, युवक हो या युवतियां, किसी भी फील्ड में लोग काम कर रहे हों, डॉक्टर्स हों, मिलिट्री ऑफिसर्स हों, बड़े अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोग जब किसी समस्या से परेशान हो जाते हैं, जब उनको मनचाहा रिजल्ट नहीं मिलता, जब कोई उन्हें धोखा दे देता है, जब किसी से उन्हें बहुत बुरा व्यवहार मिलता है, जब बार बार उनको इंसल्ट सहनी पड़ती है, जब जीवन की यात्रा में वो बहुत ज्यादा फेलियर होने लगते हैं, तो निराश होकर वो सोचते हैं कि इससे तो मर जाना ही अच्छा है। हम जानते हैं कोई व्यक्ति सुसाइड तुरंत नहीं किया करता, उसके मन में बहुत समय तक संघर्ष चलता है, वो जीवन को अंत करना नहीं चाहता है, उसके मन में उसके लिए भय भी होता है। तो मैं आप सबको कहूंगा कि जीवन को सुखद बनाएं। देखिए, जीवन की इस यात्रा में हार जीत, सुख दुख, मान अपमान, फेलियर होना या सफल होना, बहुत दुख आ जाना, धन का अभाव हो जाना, पूरा बिजनेस नष्ट हो जाना, असफलता हो जाना, संबंधों में बहुत कड़वाहट आ जाना, ये सब जीवन की यात्रा में संभव है। और आजकल जबकि चारों ओर निगेटिव एनर्जी बहुत बढ़ी हुई है, जबकि मनुष्य के द्वारा पाप कर्म बहुत हो रहे हैं, जब उसे सफलता के लिए भी अनेक जगह संघर्ष करना पड़ रहा है, तब ये प्रवृत्ति सुसाइडल टेंडेंसी बहुतों में बढ़ती हुई नजर आती है। युवक बच्चे बोलने लगते हैं कि मुझे ये नहीं मिलेगा तो मैं सुसाइड कर लूंगा। बड़ी आश्चर्य की बात होती है। हम इस शब्द को अपने जीवन से निकाल दें, अपनी डिक्शनरी से इसको समाप्त कर दें। जीवन मरने के लिए नहीं है, हम मरने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम जीवन का आनंद लेने के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन वो आनंद निगेटिव बातों से नहीं, हम सुंदर विचारों से, जीवन में सद्गुणों की धारणाओं से, अपने जीवन में एक दूसरे को प्रेम लेते और देते हुए, शांति से जीवन जीते हुए सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते रहे। कभी आपके पास ऐसा हो भी जाए कि आपके जीवन में कोई भयानक समस्याएं आ जाएं, देखिए सुनामी आई, कईयों के बहुत लोग मर गए, लेकिन उस एक व्यक्ति ने अपने जीवन में हिम्मत नहीं हारी। वो भी सोच सकता था जब सभी मर गए तो मैं भी मर जाऊं, लेकिन उसने ये नहीं सोचा मुझे जीना है, मुझे कुछ अच्छे कार्य करने हैं, मुझे समाज की सेवा करनी है, मुझे संसार को कुछ देना है। ऐसे सुंदर विचारों से उसने अपने जीवन को जारी रखने का निर्णय किया। मैं आप सबको कहूंगा, आप जीवन के किसी भी फील्ड में हैं, अपने मन में ये संकल्प कभी आने ही न दो कि मर जाएं, क्योंकि मरना समस्याओं का समाधान नहीं है, मरने से समस्याएं समाप्त नहीं होती। मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, हम सब आत्माएं हैं, मृत्यु, आत्मा जब शरीर से अलग होती है उसको मृत्यु कहा जाता है। वो नेचुरल रूप से अलग होती है, वो सहज रूप से अलग होती है, ये सहज मृत्यु होती है। लेकिन जो व्यक्ति सुसाइड करता है उसको अंतिम समय में बहुत कष्ट, बहुत पेनफुल फीलिंग, जीवन के प्रति बहुत निराशा, जीवन के प्रति बहुत अंधकार दिखाई देता है। आपको याद हो, मरने के समय मनुष्य की जो आंतरिक स्थिति होती है मरने के बाद वही कंटिन्यू होती है। इसलिए जो लोग सुसाइड करते हैं वो आत्माएं अपने सूक्ष्म शरीर से आकाश में अंधकार में भटकती रहती हैं। उन्हें प्यास लगती है, पानी नहीं होता। उन्हें भूख लगती है, भोजन नहीं होता। उन्हें आवश्यकताएं फील होती हैं, कोई पूर्ति करने वाला नहीं होता। वो अपने दुखों की गाथाएं किसी को नहीं सुना सकते, तो सुसाइड करने के बाद लंबा साल, किसी के 100 साल, किसी के 2 साल भयानक अशांति और दर्दनाक स्थिति में व्यतीत होते हैं। इसलिए एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने जीवन की समस्याओं को विवेकपूर्ण ढंग से हल करे। वो जीवन में आई हुई निगेटिव बातों को बहुत ज्यादा अपने ब्रेन में घुसने न दे, उन्हें साथ साथ निकाले, कुछ ज्ञान प्राप्त करे। हो क्या गया है कि साथी, सुनाने वाले सभी निगेटिव हो गए हैं। सभी बोलने लगते हैं, अरे जीवन कुछ नहीं है, इसे तो मर जाना अच्छा है। लेकिन इस शब्द को हमें अपने अंदर नहीं आने देना है। समस्याओं को हल करें, जीवन को सुंदर बनाएं। मेरे पास ऐसे पिछले ही साल के 4 अनुभव हैं, जब युवक मरने के लिए कोई नदी के किनारे पहुंच गया है, कोई रेलवे लाइन के समीप पहुंच गया है, और अचानक उन्होंने मुझे फोन कर दिया। पता नहीं मोबाइल ले गए, वो भी हंस रहे थे कि पता नहीं मोबाइल जेब में कैसे रह गया। हमने उनको मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, जीवन बहुत सुखों के लिए है, वापिस आ जाओ। और बस उन्हें भी जैसे इंतजार थी कि कोई उन्हें कहे, वो वापिस आ गए, मुझे मिलते हैं, बहुत खुश होते हैं कि आपने हमारा जीवन बचा लिया। तो सच अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्मों को अंजाम दें, लक्ष्य बना लें। हमें पुण्य कर्म करने हैं, पाप से बचना है, तो हमारे पुण्य कर्म हमारे साथी बनकर हमें हर परिस्थिति से पार कराएंगे। हमें खुश रहना है, हमें दूसरों को साथ देना है, हमें छोटी-छोटी बातों से अफेक्ट नहीं होना है, तो मरने की इच्छा ही नहीं होगी, सुखद जीवन जीने की इच्छा होगी। मेरी सभी के लिए ये श्रेष्ठ भावना है, सुंदर कामना है कि मरने का संकल्प किसी को भी ना आए, जीवन को सुंदर बनाने का संकल्प आए। कुछ भी बातें आपके परिवार में हैं, आपके संबंधों में हैं, पति पत्नी के बीच में हैं, आप बैठिए, एक दूसरे की बात सुनिए, उसको समाधान कीजिए, तो आप जीवन की यात्रा में बहुत सुखपूर्वक आनंदपूर्वक आगे बढ़ सकेंगे। आप अपनी कुछ स्वीट मेमोरीज को सामने लाएं, आप अपने अंदर छुपी हुई योग्यताओं को, टैलेंट्स को, महानताओं को देखें। आपने पूर्व काल में, पास्ट में बहुत अच्छे अच्छे काम किए होंगे, आपके पास बहुत अच्छी अच्छी योग्यताएं हैं। आप अपनी इनर पावर्स को पहचानें, आपके पास अनेक शक्तियां छुपी हुई हैं। सचमुच आप जीवन को मोस्ट ब्यूटीफुल बना सकते हैं। अपनी योग्यताओं को, अपने टैलेंट्स को कार्यों में लगाओ, निराशा के अंधकार से बाहर निकल जाओ। अपनी कमियों पर, जो कुछ भी बुरा हुआ है उसको बार बार जो आप याद करते हैं उसको भूल जाओ, और सुंदर मेमोरीज को याद करो, तो जीवन की यात्रा बहुत अच्छी हो जाएगी। आप ध्यान दें, आपकी जरूरत इस संसार को है, आप महान हो, आप एक सुंदर भाग्य लेकर पैदा हुए हो। भगवान भी संसार को सत्युग में बदलने के लिए कार्य कर रहा है, वो आपका आह्वान कर रहा है, उसको भी आप जैसे योग्य व्यक्ति की जरूरत है। इसलिए आपको निराश नहीं होना है, आप अपनी महानताओं को पहचानो और जीवन की यात्रा की एक सुंदर शुरुआत फिर से करो। हाँ, हम आपके साथ हैं, हमारी शुभ भावनाएं आपके साथ हैं, अनेक योगियों के सुंदर वाइब्रेशंस भी आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हो। बुरे दिन मनुष्य के जीवन में आते हैं और चले जाते हैं। अगर आपके पास ये थोड़ा सा बुरा समय आया है, ये शीघ्र ही बीत जाएगा और आप एक सुनहरे भविष्य में प्रवेश करेंगे। ओम शांति। भारत में एजुकेशन बहुत तीव्रता से आगे बढ़ रही है और हमारे यहाँ हम देखते हैं बच्चों में, युवकों में एक अच्छी एजुकेशन को प्राप्त करने का बहुत अच्छा उमंग उत्साह भी है। ये बहुत अच्छी चीज है, पर बहुत स्टूडेंट्स के बीच में देखा जाता है कि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आते हैं उनकी धड़कन बढ़ने लगती है। बहुत बच्चे तो ये भी अनुभव सुनाते हैं कि उन्हें सब कुछ याद था, लेकिन जैसे ही पेपर देखा वो नर्वस हो गए और उन्हें ऊपर की लाइन नीचे, नीचे की लाइन ऊपर दिखने लगी, आंखों के आगे अंधकार छा गया और जैसे वो सब कुछ भूल गए। तो ये एग्जाम फियर एक बहुत बुरी चीज है। मेरे पास ऐसे भी कुछ समाचार आते हैं कि एक कैंडिडेट बहुत अच्छा कंपटीशन दे रहा है, कंपटीशन का युग है, हर व्यक्ति, हर युवक ये चाहता है ये इस कंपटीशन में वो बहुत आगे निकल जाए, उसको कहीं भी नीचा देखना न पड़े, उसका लेवल बहुत ऊंचा ऊंचा हो। ये चीजें भी उसको टेंस बनाए रखती हैं और जब वो एग्जाम देने जाता है तो उसके भय से वो भयभीत रहता है। सभी स्टूडेंट्स को, सभी कैंडिडेट्स को ये सीख लेना है कि हमारा मन जितना शांत होगा, हमारे मन में जितनी पेशेंस होगी, हमारी बुद्धि की कार्य शक्ति उतनी ही बढ़ी हुई होगी। जो कुछ हमने पढ़ा है पूरा साल या छह मास या एक मास में जो हमने तैयारी की है वो सब हमारी बुद्धि में समाया रहता है, लेकिन अगर हम भयभीत हो जाते हैं, अगर हम नर्वस हो जाते हैं, अगर हम विचलित हो जाते हैं तो हमारे मन की तीव्र गति हमारी बुद्धि की कार्य शक्ति को छीन कर देती है। इस सिद्धांत को सभी को याद रखना है। तो आपको याद रहे कि आपके मन में अगर बहुत ज्यादा विचार चल रहे होंगे, आपके मन में यदि डर समाया होगा, यदि आपके मन में नर्वसनेस आ गई, तो जो कुछ आपने याद किया है बुद्धि में वो सब आपको भूल जाएगा। इसलिए आप ध्यान दें, अपने मन को पूरी तरह शांत कर दें तो आपकी बुद्धि में मेमोरी है वो बिल्कुल इमर्ज हो जाएगी और काम करने लगेगी। तो मैं आपको कहूंगा कि एग्जाम तो आपके लिए एक एंजॉयमेंट है, जो आपने प्रिपरेशन की है, आप जितने इंटेलिजेंट हैं उसको दिखाने का, उसको प्रदर्शित करने का एक सुंदर मंच है। आप उस मंच पर घबरा कर न जाइए, आपको एक बहुत सुंदर रोल प्ले करना है, ऐसा आप विचार कर लें। आप अपने अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस भी भरें कि आपने जो कुछ याद किया है वो सफिशियंट है, आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपका रिजल्ट बहुत सुंदर होगा। इन संकल्पों से आप अपने मन की घबराहट को पूरी तरह समाप्त कर दें, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम में जाएं। मैं ये भी कहूंगा कि आप एग्जाम से पहली रात को रेस्ट भी अच्छा करें, ये नहीं कि सारी रात जागते रहें, ये नहीं कि दो ही घंटे सोएं। अगर आपने प्रॉपर नींद नहीं ली है तो आपका ब्रेन ठीक ढंग से काम नहीं करेगा, कई चीजें आपको भूल सकती हैं। इसलिए एग्जाम से पहली रात को 6 घंटे आपको सो ही लेना चाहिए ताकि ब्रेन आपका बिल्कुल फ्रेश रहे और आप बिल्कुल एक्टिव रहेंगे, नहीं तो आपका बॉडी भी थका थका रहेगा, सुस्त रहेगा और आपके लिखने की स्पीड भी बहुत धीमी पड़ जाएगी। इन बातों का ध्यान रखते हुए आप अपने अंदर फुल कॉन्फिडेंस लाएं, बिल्कुल भय को प्रवेश ही न होने दें। अगर आप फर्स्ट क्लास स्टूडेंट हैं तो संकल्प करें मेरे और अच्छे मार्क्स आएगी, आप सेकंड क्लास हैं तो आप संकल्प करें गुड सेकंड आएगी, आप पढ़ाई लिखाई में कमजोर हैं, आप इन संकल्पों से एग्जाम में जाएं कि मैं अच्छी तरह से पास हो जाऊंगा। अगर आप और अच्छे हैं तो आप संकल्प करो मैं टॉप करूंगा। तो इस तरह के कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप एग्जाम में जाते हैं तो ये डर भी खत्म हो जाएगा और आपने जो कुछ याद किया है आपकी मेमोरी ठीक ठीक काम करती रहेगी और बहुत अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। तो आपको ये याद रहे कि जो कुछ आपने पढ़ा है, सारा साल क्लास में सुना है अपने टीचर से या आपने खुद तैयारी की है, वो आपकी मेमोरी में स्टोर है, सब वो कहीं गया नहीं है। बस इतना ही समझ लेना है कि जो कुछ स्टोर है हमारे अंदर उसको एग्जाम के समय हमें इमर्ज कराना है। तो इसके लिए एक तरीका ये है कि अपने मन को बिल्कुल शांत रख के आप जब सोचेंगे, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब शांत मन से आप सोचेंगे इसका उत्तर, तो सब कुछ आपकी मेमोरी में इमर्ज होने लगेगा, आपको सब कुछ याद आने लगेगा। आप ये बिल्कुल न सोचें कि जो कुछ आपने पढ़ा वो स्टोर नहीं है, क्योंकि बुद्धि आपकी अपनी चीज है, वो आपकी आज्ञा का पालन करेगी। आप अपनी बुद्धि को एक संकल्प दे सकते हैं, हे मेरी बुद्धि, जो कुछ मैंने सारे साल में पढ़ा है अब उसको तुम इमर्ज कर दो, उसको याद कर लो, तो आपको फटाफट सब कुछ याद आने लगेगा। ऐसे ही आपने कई बार एग्जाम दिए हैं, आप अपने एग्जाम देने के मोमेंट्स को याद करें और उनसे कुछ प्रेरणा लें। आप बिल्कुल पीसफुल हो जाएं, हर एग्जाम में आपने सफलता पाई है, अच्छे मार्क्स लिए हैं, इस बार भी आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, आपका परफॉर्मेंस और बेटर होगा, ऐसे आत्मविश्वास के साथ आप एग्जाम में अपीयर होंगे, तो न डर रहेगा न नर्वसनेस आएगी और दिनों दिन आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही बढ़ता जाएगा। स्वीट रिलेशनशिप्स का जीवन में बहुत महत्व है, आपको इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। संबंध ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं धन की अपेक्षा, संबंध ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं किसी और चीज की अपेक्षा, आप अपने मन में इस चीज को पूरी तरह से संभालें। तो अगर हमें संबंधों को कंटिन्यू रखने के लिए कुछ चीजों का त्याग भी करना पड़े तो उसको खुशी खुशी से कर देना चाहिए। तो पहली चीज, आप संबंध के महत्व को बहुत ध्यान देंगे। देखिए, आप सब देख रहे हैं, बचपन से आपने, हम सब ने माँ बाप के समीप संबंध के कारण जीवन के आदिकाल में ही बहुत सुख प्राप्त किया, उनका प्यार प्राप्त किया, उनकी पालना प्राप्त की। पर हम देखते हैं जैसे जैसे मनुष्य के भी मन के अंदर स्वार्थ बढ़ता जाता है, ईगो बढ़ता जाता है, उसकी अपनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाती हैं, तो ये संबंध ब्रेक हो जाते हैं। आपको संबंधों को ब्रेक नहीं करना है, चाहे आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम करना पड़े, चाहे अपने स्वार्थ को आपको छोड़ देना पड़े। चेक कर लें आप, यदि कहीं आपके संबंधों में ऐसा बिगड़ाव आ गया है, आपको कोई लोग छोड़कर चले गए हैं, चाहे ये बात पति पत्नी के बीच हुई है, चाहे बॉस और सबॉर्डिनेट के बीच हुई है, चाहे दो फ्रेंड्स के बीच हुई है, चाहे दो आपस में किसी भी अच्छे कार्य में कर रहे साथी हैं, उनके बीच में किसी मनमुटाव के कारण संबंध ब्रेक हो गए हैं। हमें एक लक्ष्य बना लेना चाहिए कि टूटे हुए संबंधों को हमें फिर से जोड़ना है। मेरी बात से आप अवश्य सहमत होंगे, क्योंकि अगर हम एक टूटे हुए संबंध को नहीं जोड़ेंगे और दूसरी जगह हम कहीं संबंध जोड़ेंगे, वहां भी टूटने की संभावना बराबर बनी रहेगी। क्या करेंगे आप इसके लिए? देखिए, पहली चीज का ध्यान दें, मनुष्य संबंधों में प्राय जब ऐसी गड़बड़ होती है तो दूसरों को उसका दोषी मानता है, वो दूसरों पर ब्लेम लगा देता है कि इसके इस व्यवहार के कारण, इसकी इस कमी के कारण हमारे संबंध टूटे हैं। लेकिन आपको ये नहीं करना है। देखिए, बुद्धिमान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति वही है जो अपनी कमी को एक्सेप्ट कर ले, एक्सेप्ट करके उसे चेंज कर ले। हो सके अगर आपसे कुछ गलती हो गई है तो दूसरे से क्षमा याचना भी कर ले। तो आपको ये सब चीजें अपना लेनी है। संबंध टूट रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, बिगड़ने दो, संबंध और बन जाएंगे, ऐसे निगेटिव विचार अपने अंदर नहीं आने देना है। कहीं आपके संबंध टूट रहे हैं, आपके भरसक प्रयास के बाद भी संबंधों का मिलन फिर से नहीं हो पा रहा है, तो आप अपने जीवन में निराशा को, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को जन्म न लेने दें, क्योंकि यद्यपि संबंध बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है मनुष्य का अपना जीवन, उसके अपने उत्तम विचार, उसके मन में समाया हुआ प्रेम और सभी के लिए शुभ भावनाएं, क्षमा भाव, इनका बहुत महत्व है। तो कहीं आपके साथ ऐसा ना हो रहा हो कि संबंधों का बिखराव आपकी इनर फीलिंग्स को निगेटिव कर रहा हो, आपकी फीलिंग्स को पॉइजनस बना रहा हो, क्योंकि आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हैं। उनको कहीं भी आपको दूषित नहीं होने देना है, निगेटिव नहीं होने देना है, अर्थात अपनी खुशी को नष्ट नहीं होने देना है, अपनी भावनाओं को बिगड़ने नहीं देना है। बहुत जगह संबंधों में जब ब्रेक होता है तो एक मनुष्य के मन में ये भावनाएं उठ जाती हैं, इस संसार में सभी खराब हैं, अरे कोई भी तो अच्छा नहीं है, आपको इससे बचना है, क्योंकि ये ड्राई फीलिंग्स हैं। ये ड्राई फीलिंग्स आपके लाइफ को ड्राई बना सकती हैं और आप अपने संबंधों को कहीं भी सुंदर नहीं बना पाएंगे। और जगह भी जब आपके संबंध बनेंगे उनमें ड्राईनेस अपना प्रभाव दिखाती रहेगी। इसलिए मैं आपको एक राय दूंगा, दो चीज आपके पास बहुत सुंदर हैं, वो आपके पास हैं, जस्ट रियलाइज देम। एक है शुभ भावनाएं, दूसरा है प्रेम। और आपको विश्वास होना चाहिए आपकी शुभ भावनाएं, आपकी इनर प्रेम की फीलिंग्स आपके बिगड़े हुए संबंधों को फिर से जोड़ सकती है, टूटे हुए नातों का फिर से मिलन करा सकती है। तो आप अपनी हिम्मत न छोड़ें, अपने जीवन को कड़वाहट और निराशा से न भरें, और ये भी न मान लें कि हम तो संबंधों के फील्ड में सफल होंगे ही नहीं, अपने तो अकेले ही अच्छे हैं। अकेला जीवन जीना सहज काम नहीं होता है, इसलिए अपने चित्त को प्रेम और शुभ भावनाओं से भरें, दूसरों को शुभ भावनाएं देते रहें, तो दूसरों की भी जो निगेटिव फीलिंग्स होंगी वो भी चेंज हो जाएंगी। बहुत अच्छी बात आप याद रखेंगे कि आप यदि ये सोचते हैं वो दोषी है तो वो भी आपकी अपनी उंगली आपकी तरफ उठाएगा कि वो दोषी है। और जिस क्षण आपको ये रियलाइज हो जाएगा, जिस क्षण आप एक्सेप्ट कर लेंगे गलती मेरी है, उसी क्षण दूसरा व्यक्ति भी स्वीकार कर लेगा गलती मेरी है, और संबंधों में मिठास आ जाएगी। मैं आपको कहूँगा कदम पहले आप आगे बढ़ाएं, आप पीछे न हटें। मनमुटाव हो जाता है, थोड़ी बहुत बातें संबंधों में होती हैं, लेकिन संबंधों को झटके से तोड़ देना बुद्धिमानी नहीं है। अगर टूट गया हो तो कदम पहले आप आगे बढ़ाएं, आप पुनः संबंधों का सुख प्राप्त कर सकेंगे। ये एक बात और मुझे आपके समक्ष रखनी है कि जिस व्यक्ति से आपके संबंध टूटे हैं, बिगड़े हैं, थोड़ा बहुत मनमुटाव हुआ है, याद करो, उसने आपको कभी बहुत अच्छा सहयोग दिया होगा, उसने भी आपको जीवन में बहुत प्यार बांटा होगा, उसके अंदर भी बहुत अच्छी अच्छी खूबियां होंगी, उन चीजों को जरा आप याद करो, तो उसको भी आपके अंदर छुपी हुई खूबियों का आभास होता रहेगा। और इससे जो निगेटिविटी आ गई है, जो अलगाव पैदा हो गया है, जो दूरी बढ़ गई है, वो फिर से समीपतम बदलने लगेगी, क्योंकि जब आप उनके गुण देखेंगे, उनके द्वारा पास्ट में दिया गया सहयोग और कुछ अच्छे कार्यों को आप याद करेंगे तो आपके मन में उनके लिए प्रेम पैदा होगा, यही प्रक्रिया उनके मन में भी होगी और दोनों का प्रेम फिर दोनों को समीप ले आएगा। आप अपने अंदर भी निराशा और निगेटिविटी को न लाएं किसी भी तरह से, क्योंकि आपके निगेटिव संकल्पों से निकलने वाली निगेटिव एनर्जी मनुष्य को आपसे दूर ले जाएगी, संबंधों को और ये जो खाई है इसको और गहरा कर देगी। इसलिए आप इस सिद्धांत को ध्यान में रखेंगे कि आपकी गुड फीलिंग, आपका प्रेम, उनके गुणों को आप मन ही मन अप्रिशिएट करें, उनकी भावनाओं का सम्मान करें, तो ये बीच की खाई भर जाएगी और पुनः संबंधों का सुख आपको मिलने लगेगा। आपको अपने अंदर की छुपी हुई योग्यताओं को, गुणों को भी पहचानना होगा। हो सकता है दूसरा व्यक्ति किसी भी कारण से आपके अंदर छुपी हुई महानताओं को न पहचान पा रहा हो। आप यदि अपने गुणों का स्वरूप बनकर रहेंगे, एक गुड फीलिंग में रहेंगे, अच्छे स्वमान में रहेंगे, दूसरे को भी एक अच्छी नजर से देखेंगे, तो टूटे हुए संबंध भी पुनः जुड़ जाएंगे। इसलिए अपनी ओर से आप आगे बढ़े हैं, उसने आपसे नाता तोड़ लिया है, भले ही तोड़ लिया है, लेकिन आप मन से उससे नाता न तोड़ो, उसकी खूबियों को स्मरण करते रहो और हो सके तो रोज सवेरे उठकर 1-2-3 मिनट उसको गुड वाइब्रेशंस, प्रेम के वाइब्रेशंस, खुशी के वाइब्रेशंस देते रहेंगे तो वो आत्मा पुनः आपके समीप आती जाएगी। ओम शांति। जीवन की यात्रा में हर मनुष्य को मृत्यु के दृश्य तो देखने ही पड़ते हैं, उनके नियर वंस डियर वंस की मृत्यु होती है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाती है जिन पे सारा परिवार डिपेंडेंट था। कभी कभी ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है जो बहुत प्रिय थे, जो बहुत अच्छी आत्माएं थी। कभी कभी मृत्यु के कारण कुछ बड़े विकराल बन जाते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, सुनामी आ जाती है। कभी कभी मनुष्य को दूसरे को मरते हुए अपनी आंखों से देखना पड़ता है और मनुष्य उसके लिए कुछ नहीं कर पाता। ऐसे में मनुष्य के ऊपर एक बुरा इफेक्ट होता है। आपके साथ यदि ऐसा कुछ हो गया हो तो अब आपको संभलना है। हम देखते हैं कई लोग किसी की मृत्यु के प्रभाव में कई कई साल तक जीवन गुजारते हैं, कई रोते ही रहते हैं, कईयों पर इमोशनल इफेक्ट बहुत आ जाता है, कई बहुत दुखी रहने लगते हैं, कई अपने को अकेला महसूस करने लगते हैं, उनका आगे का जो जीवन है निराशा से भर जाता है, बहुत अकेलापन महसूस हो जाता है। आपको इससे बाहर निकलना है, क्योंकि हरेक के साथ कहीं ना कहीं ये घटनाएं हुई हैं। आप स्वीकार कर लें, मृत्यु और कुछ नहीं, जैसे हम एक वस्त्र बदलते हैं रोज, ऐसे आत्मा देह रूपी वस्त्र बदल लेती है। आप ये भी जानते हैं कि मृत्यु तो अवश्यंभावी है, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु अवश्य होनी है। आपको ये भी जानना चाहिए कि जीवन का जो काल होता है इसका निर्धारण मनुष्य के कर्मिक अकाउंट के आधार पर होता है। जब कर्मों का खाता पूर्ण हो जाता है तो उस आत्मा को वहां से जाना ही होता है, चाहे मृत्यु का कारण कुछ भी हो जाए। तो मृत्यु आप देखते हैं जीवन की यात्रा, जो लंबी यात्रा है हमारी, उसका एक पड़ाव है। इसे हमें स्वीकार कर ही लेना चाहिए। यद्यपि सत्य है कोई व्यक्ति मरना नहीं चाहता, पर यह भी परम सत्य है कि हरेक व्यक्ति को मरना तो अवश्य है। निसंदेह मृत्यु एक दुखद घटना होती है, इसमें मनुष्य को अनेक दुखों के पहाड़ गिर रहे हैं, ऐसा भी अनुभव होता है। लेकिन आपको ये सोचना है कि जो कुछ हो गया उसे स्वीकार कर लें। जो कुछ हो गया और मृत्यु एक ऐसा सत्य है जो अटल चीज है, इसको कोई बदल नहीं सकता है, तो मृत्यु को आप स्वीकार कर लें। वो व्यक्ति यदि आपके परिवार का पालन पोषण करने वाला था, आपको ये चिंता हो रही है अब हमारे परिवार का क्या होगा, तो आपको जानना चाहिए कि आपके परिवार में जितने भी मनुष्य हैं वो सब आत्माएं अपना अपना श्रेष्ठ भाग्य साथ में लिए हुए हैं। उनका जीवन, उनका भविष्य उनके भाग्य के अनुसार सुंदर बनता ही जाएगा। यदि आपके किसी प्रियजन की मृत्यु हो गई है, मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँ, एक यंग आयु में, बिल्कुल युवा काल में एक पत्नी का पति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, निसंदेह उस नारी के लिए बहुत बड़ी घटना ये होती है जो उसके जीवन को झकझोर करके रख देती है। आपके साथ यदि कहीं ऐसा हो गया है तो इसे स्वीकार कर लें। अपने बच्चों की अब आपको पालना करनी है, भगवान को अपना साथी बना लें, अब उससे प्यार करेंगे तो मन कभी उदास नहीं होगा। नहीं तो नारी का मन इससे बहुत उदास रहने लगता है, वो संसार के इस खेल में अपने को अकेला असहाय महसूस करने लगती है, उसके मित्र संबंधी भी उसको कभी कभी उल्टा सुल्टा भी बोलने लगते हैं। जैसे आप जानते हैं समाज में ऐसी कई विकृतियां हैं, वो बोलने लगते हैं यही बहुत दुर्भाग्यशाली आत्माई है जिसने अपने पति को भी खा लिया। ऐसी बातों से आप परेशान न हो। कोई किसी के काल का कारण इस संसार में नहीं बनता। हर व्यक्ति की मृत्यु का एक निश्चित समय है, एक निश्चित स्थान है, एक निश्चित कारण है। इसलिए लोगों की बातें सुनकर आप अपने दुखों में बढ़ोतरी नहीं करेंगे। समाज में ऐसा अनेकों के साथ हो रहा है कि मरने वाला मर गया, लेकिन लोग उल्टा सुल्टा बोलते रहते हैं। इसका इफेक्ट उन लोगों पर आता है जिसके लिए बोला जाता है। आप ज्ञान से अपने जीवन का श्रृंगार करें, कुछ ईश्वरीय ज्ञान अपने जीवन में अपनाएं, अपने चिंतन के लेवल को थोड़ा ऊपर उठाएं और स्वीकार कर लें जिसका साथ आपको था आज उसका साथ नहीं है, तो भगवान साथी है और कोई साथी आपको मिल जाएंगे और आपके जीवन की यात्रा बहुत सुंदर चलेगी। किसी की भी मृत्यु के बाद पूरा जीवन दुखी रहना ये विवेकशीलता नहीं है। हमने ऐसे कई लोग देखे हैं कि वो सालों साल रोते ही आ रहे हैं, लेकिन रोना नहीं, एक उज्जवल भविष्य की ओर देखना है, क्योंकि जिसकी मृत्यु हुई वो तो चला गया। अब आपको एक सुनहरे भविष्य का निर्माण करना है, अपने बच्चों की पालना करनी है। जो आप पर आश्रित हैं, वो आप अपना भाग्य भी साथ लेकर चल रहे हैं, उनको भी आपको आगे बढ़ाना है। इसलिए मन पर अगर ऐसी घटनाओं की काली छाया बैठ गई हो, उसको उतार दें और बहुत हल्के फ्रेश होकर एक नव जीवन में प्रवेश करें। किसी की मृत्यु होने के बाद सब भगवान को तो बहुत याद करते ही हैं, लेकिन उससे अपना यदि नाता जोड़ लिया जाए, उसको अपना परम पिता मान लें, परम शिक्षक मान लें, परम सद्गुरु मान लें, प्रियतम मान लें, वो उसको अपनी सच्ची माँ बना लें, उसको अपना बच्चा बना लें, एक नाता उससे हम जोड़ लें, तो उस नाते के आधार से हम बहुत सुख प्राप्त कर सकते हैं। नाते जोड़ने का आधार ही होता है स्वीकार करना। तो पहले भगवान को जान लें, उसके लिए ईश्वरीय ज्ञान आप ले लें और फिर कोई एक नाता उससे जोड़ लें। भक्ति में भी आपने देखा होगा, श्री कृष्ण से लोगों ने नाता जोड़ा, किसी ने उसको अपना पति बनाया, किसी ने उसको अपना बच्चा बनाया, किसी ने उसको अपना फ्रेंड बनाया और बहुत सुंदर अनुभव श्री कृष्ण के रूप में उन मनुष्यों को होते रहे। जिसे भी आप भगवान मानते हैं, वैसे तो भगवान अलग ही है, लेकिन फिर भी किसी देवी देवता में आपका विश्वास हो, उससे आप अपने मन का नाता जोड़ लें, तो ये जो नातों का बिछोह होता है, इसके दुख से आप बच जाएंगे। ओम शांति। कार्य व्यवहार में, बिजनेस व्यापार में कई बार मनुष्य को अप्स एंड डाउन से गुजरना पड़ता है। लंबे समय तक बिजनेस में प्रगति होती रही, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि लॉस होने लगता है, सब कुछ नष्ट होने लगता है, किसी को दिवाला हो जाता है, किसी को बिजनेस में सफलता नहीं मिलती है। ये सब यदि आपके साथ हो रहा हो तो आप थोड़ा सा धैर्यवान बने, चेक कर लें, देख लें कि क्या कारण बन रहे हैं, कोई आपको धोखा दे रहा है, कोई आपका पाप कर्म आपको धोखा दे रहा है, कहीं आपसे गलती हो गई है जहां जिसके कारण आपके कारोबार में, आपके बिजनेस में एकदम लॉस होने लगा है, ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास भी आते हैं। मैं सबसे पहले आपको ये कहूंगा कि जीवन में आप अपने अंदर पुण्यों का खाता बढ़ाते चलें। जब मनुष्य के जीवन में बुरे दिन आते हैं, जब चाहते हुए भी उसको सफलता नहीं मिल पाती, जब कुछ अनहोनी बातें अचानक अचानक उसके जीवन में होने लगती, मान लो जैसे दंगा हो गया और दुकानों को आग लगा दी गई, आपका भी बहुत सारा माल जलकर नष्ट हो गया, ऐसी घटनाएं भी होती रहती हैं, चोरों ने ताले तोड़ लिए और सब कुछ ले गए, ऐसी घटनाएं भी कभी कभी होती रहती हैं। आपको भी यदि कभी ऐसी घटना से गुजरना पड़ गया या पड़ जाए तो सबसे पहले अपने धैर्य को न खोएं। देखिए, एक बहुत सुंदर बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जिन्होंने अपना बिजनेस बहुत छोटे लेवल से शुरू किया था। कोई कोई तो रेडी पर सामान बेचते थे और वो बहुत बड़े बड़े आदमी बन गए। आप उनमें से कईयों के नाम शायद जानते भी होंगे। इसका अर्थ है कि बिजनेस के क्रिएटर आप हैं। ध्यान दें, आप सब कुछ आपने क्रिएट किया है, आपका भाग्य आपने बनाया है, बिजनेस का विस्तार आपने किया है। तो यदि कभी कुछ गड़बड़ हो जाए, नष्ट हो जाए आपका सब कुछ, तो आप में क्रिएटिव पावर है, आप फिर से क्रिएट कर सकेंगे। ऐसा कॉन्फिडेंस, ऐसा अपने श्रेष्ठ भाग में विश्वास आपको रखना है। देखिए, जीवन, इसमें आने वाले उतार चढ़ाव, कभी लाभ कभी हानि, कभी हार कभी जीत, कभी सुख कभी दुख, कभी सफलता कभी असफलता, ये भी जीवन के दो विपरीत पहलू होते हैं और ये बहुत मनुष्यों को फेस करने ही पड़ते हैं। तो कुछ चीजों के लिए हमें अपने जीवन में स्वयं को तैयार भी रखना चाहिए। मैं आपको कहूंगा, अपने बिजनेस को बहुत अच्छे कंट्रोल में रखें। अगर आपके बिजनेस में लॉस हो गया है तो फिर से मार्ग निकाल लें, विचार कर लें, और अगर सब कुछ करते हुए भी आपको सफलता नहीं हो रही है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य को समझ में नहीं आता, सब कुछ करते हैं लेकिन सफलता नहीं हो रही है, तब ईश्वरीय शक्तियों का आपको साथ लेना है। आपके अंदर बहुत सारी पावर है, आप निराश न हो। ये नहीं कि सब कुछ नष्ट हो गया तो हम भी अपने को नष्ट कर लें, नींद ही ना आए रात को, ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाए, हार्ट अटैक होने लगे, अनेक बीमारियों के आप शिकार हो जाएं। ये नहीं, अच्छे दिन आए थे हमने एंजॉय किया, आज थोड़े बुरे दिन आ गए, ये भी पास हो जाएंगे, ये भी बीत जाएंगे, आज लॉस हुआ है कल बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे सुंदर विचारों से अपने मन को उमंग में लाएं, खुशियों में लाएं, भगवान को अपना साथी बना लें, बल्कि मैं कहूंगा कि भगवान को अपना बिजनेस पार्टनर बनाकर रखें आप, वो आपका सच्चा साथी होगा। और जहां परिस्थितियां ऐसी आ जाएं जिनको आप ठीक न कर पाएं, वहां उन परिस्थितियों को उनके हवाले कर दें, उन समस्याओं को अपने परमपिता के हवाले कर दें, तो वो सर्वशक्तिमान है और सब कुछ ठीक कर देगा। एक बात और कहूंगा, मैंने बहुतों से ये अभ्यास किया है, आपके जीवन में भी कभी ऐसी बात आ जाए या आ गई हो तो उन परिस्थितियों को अपने परमपिता को, जिसको आपने अपना बिजनेस पार्टनर बनाया है, उसको समर्पित कर दो। उसे बात करो सवेरे उठते ही कि अब तुम भी तो मेरे पार्टनर हो, अब बिजनेस में ये निगेटिविटी आ रही है, लॉस हो रहा है, यहाँ सफलता नहीं मिल रही है, अब तुम इसे ठीक करो। तो आपको पता चलेगा, अनुभव होगा कि परमात्मा शक्तियाँ आपको सहयोग देने लगी हैं। मनुष्य को कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि आपके सामने और भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। कभी कभी ऐसा होता है, एक अवसर जाता है, उससे सुंदर, कई गुना सुंदर अवसर हमारी इंतजार कर रहा होता है। तो आप केवल एक ही चीज को पकड़ के रखेंगे तो एक सुंदर चीज आपके हाथ में कभी नहीं आएगी। इसलिए कभी कभी कुछ गलत घटनाएं हमें एक सुंदर भविष्य की ओर भी ले चलती हैं, लेकिन अगर आप अपने मन को निराश कर देंगे, आप अगर अपने उमंग उत्साह को छोड़ देंगे, घर में बैठ जाएंगे, आपके मन पर यदि उन चीजों का बहुत बुरा इफेक्ट हो जाएगा तो आपके सामने जो अपॉर्चुनिटीज खड़ी हैं उनको आप देख ही नहीं पाओगे, उन्हें ग्रहण कैसे करोगे। इसलिए अपने मन को जरा खुला रखो, ये सब चीजें जीवन में संसार में होती हैं, आई हैं सो चली जाएगी, कल अच्छा था आज बुरा हुआ है, कल फिर अच्छा हो जाएगा, ऐसे आत्मविश्वास के साथ आप जीवन में आगे बढ़ेंगे तो परमात्मा सहयोग भी आपको प्राप्त होगा और आप इस दुविधा से, इस दलदल से बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। हाँ, हमारी भी आपके लिए ये बहुत अच्छी श्रेष्ठ भावना है कि आप एक अच्छे बिजनेसमैन बने, आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करें और भगवान आपका सदा ही साथी बनकर रहे। ओम शांति। हर मनुष्य जीवन में स्वस्थ रहना चाहता है, आप भी चाहते हैं। यदि आपको कुछ विशेष बीमारियों से गुजरना पड़ रहा है तो आप घबराएं नहीं, हर बीमारी का इलाज आपके पास भी है तो डॉक्टरों के पास भी है। मैं तो आपको ही आपका डॉक्टर बना देना चाहता हूँ। हमारी मेडिकल साइंस में जितनी भी थेरेपी चल रही हैं, कोई किसी एक चीज का इलाज करती है, कोई किसी दूसरी चीज का, एक थेरेपी के पास सभी बीमारियों का इलाज नहीं होता। इसलिए आप किसी भी अपनी भयानक बीमारी को देखकर निराश न हो, बिल्कुल मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ, अनुभव के साथ कह रहा हूँ आपको कि हर बीमारी का इलाज है। आप खोज कर लें, कुछ का एलोपैथी में है, कुछ का नेचर क्योर में है, तो कुछ का होम्योपैथी में है, कुछ का जनरल दवाइयों में है, एक्यूप्रेशर में है, एक्यूपंचर में है, मैग्नेट में है, कुछ घरेलू लोग, गांव में रहने वाले लोग कुछ बड़ी बड़ी बीमारियों को ठीक कर देते हैं। तो आप बिल्कुल होपफुल्ली प्रयास करते रहें, निश्चित रूप से एक दिन आप संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर लेंगे। मैं आप सबको ये भी कहूंगा कि आप अपनी बीमारी के कारण पे भी ध्यान दें। डॉक्टर्स लोग बहुत चीजें आजकल बताते हैं, गलत लाइफस्टाइल, गलत खानपान, निगेटिव विचार, मन में उठा हुआ टेंशन, ये तो वो भी बताते हैं, लेकिन हम इसमें एक चीज और जोड़ दें, पास्ट कर्मों में किए गए पाप कर्म भी कहीं ना कहीं बीमारियों के जिम्मेदार होते हैं। आपको ये याद रहे कि जितना आप अपने मन को खुशी और प्रेम से भरपूर रखेंगे उतना आपकी बीमारियां जल्दी ठीक हो जाएंगी। आपको ये भी याद रखना है, जितना आपका मन हल्का होगा उतनी आपकी बीमारियां भी हल्की होकर समाप्त हो जाएंगी। ये दोनों बहुत सुंदर, आप इनको साइकोलॉजिकल सिद्धांत कह सकते हैं, पर ये कॉमन रूप से एक मनुष्य जिन चीजों को अपना सकता है वो ऐसे सुंदर सिद्धांत हैं। कोई भी बीमारी यदि आपको आ गई है, आप अपने को निगेटिव ना होने दें कि ये तो बहुत सीरियस है, इस बीमारी से तो अनेक लोगों की मृत्यु हो गई है, मेरी भी शायद मृत्यु समीप है, मैं भी शायद ठीक नहीं हो पाऊंगी, ये निगेटिव विचार आप बिल्कुल समाप्त कर दें। आपको याद रखना चाहिए एक सुंदर विचार, आपके हर थॉट में क्रिएटिव एनर्जी है। यदि आप निगेटिव सोच रहे हैं तो आप अपने अंदर निगेटिव एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं जो बीमारियों को जन्म देगी, और अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हैं तो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर रहे हैं जो बीमारियों को नष्ट करेंगी। आप एक संकल्प करके देखें, आज से मुझे ये बीमारी है ये जाएगी, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, मैं बिल्कुल स्वस्थ रहूंगी, जो चीज जीवन में आई है वो जाएगी अवश्य, परमानेंट स्थायी कुछ भी नहीं है। पहले आप अपने मन को बीमारियों के प्रभाव से इस तरह मुक्त करें। ऐसे नहीं आपका तन तो कम बीमार हो लेकिन मन ज्यादा बीमार हो जाए, आप मन में बिल्कुल खुशी को समाप्त कर दें, आप अपने मन को डिप्रेशन से भर लें, अब कमाने वाला तो कोई नहीं है, मैं अकेला कमाने वाला, मेरे परिवार का क्या होगा, मैं बीमार हो गया हूँ, पता नहीं कब तक ये बीमारी चलेंगी, डॉक्टर्स की तो पकड़ में ही नहीं आ रही है, ये सब नहीं। देखिए आपको जानना चाहिए आत्मा इस शरीर का संचालन करती है। आत्मा में दो शक्तियां मन और बुद्धि और मन की शक्ति सभी रोगों को ठीक करने में समर्थ है। आप एक सुंदर सिद्धांत की ओर चलें, मैं आपको याद दिला दूं, रात को जब हम सोते हैं, जब हमें नींद आने को होती है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, जग जाता है और वो सारी रात जगा रहता है। जब हम उठते हैं उठने के 10 मिनट तक जगा रहता है। आप अच्छी तरह जान लें, रात को आपके सबकॉन्शियस माइंड में अंतर मन में मैक्सिमम हीलिंग पावर है। आप अपने अंतर मन की शक्ति से अपने सभी रोगों को ठीक कर सकते हैं। मैंने बहुतों पर इसके प्रयोग कराए हैं और जिन्होंने फुल कॉन्फिडेंस के साथ कर लिया है वो बीमारियों से मुक्त हो गए हैं। ऐसे ऐसे लोग भी जो इलाज करा करा के परेशान होके थक चुके थे, निराश हो गए थे, इस विधि से बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। तो क्या करेंगे आप, जब आपको रात को नींद आने को है, आपका सबकॉन्शियस माइंड जग गया, तब आप 7 बार संकल्प कर दें, मैं इस बीमारी से मुक्त हूँ। यदि आपको डायबिटीज है, आप संकल्प करें, मेरी डायबिटीज नॉर्मल हो गई है। यदि आपको ब्लड प्रेशर है, आप संकल्प करें, मेरा बीपी नॉर्मल हो गया है। यदि आपको हार्ट की परेशानियां हैं तो आप संकल्प करें 7 बार, मेरा हार्ट बिल्कुल परफेक्ट शक्तिशाली नॉर्मल है। तो सबकॉन्शियस माइंड इन विचारों को स्वीकार कर लेगा और सारी रात आपकी बीमारियों को ठीक करेगा। तो ये एक सिंपल सी विधि आप अपने जीवन में अपनाएं, अपने मन को बिल्कुल खुश रखें। आपको याद रखना है, खुशी जैसी खुराक नहीं। डॉक्टर कितनी भी दवाई दें, लेकिन आपका मन यदि खुशी से भरा हुआ नहीं है, आपके मन में यदि निराशा और परेशानियां हैं, तो समझ लो दवाई आधा काम करेंगी। और आप बहुत खुश हैं, आप बहुत एनर्जेटिक हैं, आप बहुत आशावादी हैं, आपके मन में संकल्प है, कड़ी से कड़ी बीमारी भी आई है जाएगी, हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो बीमारी जो मेडिसिन आप ले रहे हैं वो भी बीमारियों पर पूरा काम करेगी और आप बिल्कुल संपूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। तो संसार में बीमारियां तो बढ़ रही हैं क्योंकि हमारे चारों ओर निगेटिव एनर्जी बहुत है। खान पान में भी आप जानते ही हैं, फलों में ताकत नहीं रही, दूध में शक्ति नहीं रही, पानी दूषित हो गया, जो हवा हम ले रहे हैं श्वास के रूप में न जाने कितने जर्म्स हमारे शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, सब्जियां अन्न भिन्न भिन्न तरह के रासायनिक खाद डाल के उपजाई जा रही हैं, उनमें भी बहुत निगेटिव इफेक्ट रहता है जो बीमारियों का कारण बनता है। आप बिल्कुल अपने को प्रसन्न रखें, भगवान से अपना नाता जोड़ें, उसकी एनर्जी प्राप्त करते रहें, तो आपके शरीर में जो निगेटिव एनर्जी आ गई, वो वायरस प्रवेश कर गए हैं, कोई विशेष बीमारियां आ गई हैं, उनसे आप बहुत जल्दी मुक्त हो जाएंगे। साथ में मैं जोर देना चाहूंगा, आप अपने जीवन में पुण्य कर्म बढ़ाते चलें, पुण्यों का खाता हमें स्वस्थ रखने में बहुत मदद करता है। कोई अचानक बीमारी आ गई हो, आप घबराए नहीं, अपने मन की शक्तियों को प्रयोग करें, बीमारी अवश्य चली जाएगी। हाँ, आप अपनी बीमारियों के प्रभाव से स्वयं को मुक्त रखने के लिए जो भी आपके प्रिय गीत हो, सॉन्ग्स हो, म्यूजिक हो, उसको आप सुनते रहें। कई कई बार गीतों में इतने सुंदर शब्द आ जाते हैं, ऐसी एक अच्छी लाइन आ जाती है जो हमारी सोई हुई चेतना को जगा देती है। इसका प्रयोग करें अपने को खुश रखने के लिए। साथ साथ ये याद रखें कि भगवान भी सुप्रीम सर्जन है, सबसे बड़ा डॉक्टर है, उससे अपना नाता अवश्य जोड़ें, उससे बातें करते रहें, उससे चिट चैट करते रहें, तो उसकी भी बहुत मदद आपको मिलती रहेगी और निसंदेह आप बीमारियों से मुक्त होते रहेंगे। मेरे अपने भी इसके बारे में अच्छे अनुभव हैं, हमारे कई साथियों के भी बहुत बहुत अच्छे अनुभव हैं। बस ध्यान आपको ये रखना है कि बीमारी आप पर हावी न हो जाए, आप बीमारियों पर हावी रहें, आप विक्टोरियस हो जाएं बीमारियों पर। हमारी भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ भावना है, आप एक स्वस्थ जीवन जिए, खुशहाल जीवन जिए, सुखी जीवन जिए। ओम शांति। आजकल संसार में ये देखने में आ रहा है कि अनेक मनुष्यों के अंदर एक डलनेस आ गई है विशेष तरह की, जिसमें उनको कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती। वे सोए रहना चाहते हैं, वो जागृत नहीं होते, वो एनर्जेटिक नहीं होते। उन्हें लगता है कि उनकी सारी अंदर की शक्तियां, सारा उमंग उत्साह नष्ट हो गया है। अगर आप इसका कारण जानना चाहेंगे तो ये लंबे काल से अपने मन में निगेटिव एनर्जी भरने का परिणाम होता है। अगर मनुष्य के पास स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है तो उसकी ये दशा होती है। इसलिए हम सदैव आपको कहते हैं कि चाहे आप छोटे हैं या बड़े, स्पिरिचुअल नॉलेज की, कुछ सुंदर विचारों की, परमात्मा से एनर्जी लेने की आपको जीवन में बहुत बहुत आवश्यकता है। अगर आपके मन की स्थिति ऐसी हो गई है कि उसमें डलनेस आ गई है, आपको कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती, तो आप अपने को एक्टिवेट करें। कुछ सुंदर विचार हम आपके समक्ष रखेंगे। पहले तो कुछ स्थूल चीज मैं आपको कह रहा हूँ कि सारा दिन आप टीवी के सामने न बैठे रहें, आप सवेरे और शाम खुले आकाश के नीचे जरा जाएं, थोड़ा वॉकिंग करें, स्वच्छ वायु में जाएं अगर संभव हो, आपके आसपास कहीं हो, कोई अच्छा गार्डन हो जिसमें फूल खिले हो, हरी घास हो, उसमें आप जाएं और अपने को जागृत करें। फिर से कुछ निगेटिविटीज ने आपको सुला दिया है, अब आपको जगाना है अपने को। आप इसमें दूसरों की ओर कभी न देखें कि दूसरे लोग मुझे मदद करेंगे, क्योंकि ये मनुष्य की अपनी एकांतरिक स्थिति होती है, उसकी कुछ निगेटिविटी का परिणाम होता है। सहज रूप से मैं ये कहूँ, बहुत लोगों को जिनको मैंने देखा, जिनकी ऐसी स्थिति बनी, उन्होंने अपने बाल्यकाल से अपना जीवन अच्छे संग में नहीं बिताया, किसी ने उनको कोई अच्छी चीज नहीं सिखाई, अगर कोई सिखाता था तो वो उसको तुरंत रिजेक्ट कर देते थे ये कहकर कि हमें तो लाइफ को एंजॉय करना है, ये सब तो बूढ़ों का काम है। तो ये बहुत बड़ी गलती मनुष्य से होती है। और भी बाल्यकाल से ही कुछ लोग कुछ गलत कामों में लग जाते हैं, तब सोचते हैं वो हम इनको एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आयु थोड़ी थोड़ी बढ़ती है, मैंने देखा 25-30 साल, बहुत बड़ी आयु की हम बात नहीं कर रहे, 25-30 साल की आयु होने पर ही इन चीजों का जो इफेक्ट था वो उनके ब्रेन पर, उनके मन पर आने लगता है और फिर उनकी एकाग्रता नष्ट हो जाती है। यदि वो कहीं विशेष रूप से कार्य करना चाहते हैं, कोई कंपटीशन देना चाहते हैं, कोई विशेष एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनकी शिकायत होती है कि उनका मन एकाग्र नहीं हो रहा है, उनको कुछ याद नहीं रहता है। फिर इन सब चीजों के कारण जीवन में निराशा आती है। आप निराश नहीं होंगे। आप जो कुछ भी अब तक हुआ है उसको भूल कर अपने जीवन में एक नए चैप्टर की शुरुआत करें। आप इसके लिए अपने को तैयार करो। पास्ट की ओर देखने से मनुष्य को कभी कुछ नहीं मिलता है। आप एक सुंदर भविष्य की ओर देखो, अपने मन में एक सुंदर विजन बनाओ, अब मेरा भविष्य ऐसा होगा। एक साल का विजन बनाओ, 6 मास की विजन बनाओ, आप बिजनेस में हैं उसकी एक विजन बनाओ, आप किसी नौकरी में हैं, आपको प्रमोशन के अच्छे चांसेज हैं, उसकी विजन बनाओ, आप एक अच्छी गृहिणी हैं, उसकी एक अच्छी विजन बनाओ कि आपका ग्रह कैसे प्रेम से भरा हुआ हो, सुंदर वाइब्रेशन से भरा हुआ हो, शांति और सुखों से भरा हुआ हो, संपन्न हो। तो एक सुंदर विजन लेकर आप अपने जीवन में अब चलें। पास्ट का जो कुछ भी इफेक्ट हुआ है उसको सुंदर विचारों से बदलें। देखिए, जैसे हमारे पास जब कैसेट्स होती थी, आप जानते हैं कि कैसेट पर कुछ रिकॉर्डेड है, अगर हम दूसरा रिकॉर्ड कर देते हैं तो पहली रिकॉर्डिंग मिट जाती है, डिलीट हो जाती है। ऐसे ही हमारे मन में, हमारे ब्रेन में जो कुछ पास्ट का हमने रिकॉर्ड कर दिया है, उसको यदि हम डिलीट करना चाहते हैं तो हमें सुंदर रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, सुंदर विचारों को अपने अंदर बार बार लाना पड़ेगा। बहुत पावरफुल तरीके से आपको लाना होगा, एक्सेप्टेंस के साथ लाना होगा, आप एक्सेप्ट करते चलें। तो मैं आपके सामने एक छोटी सी विधि रख रहा हूँ। जब आप सवेरे उठें, निश्चित रूप से आप सूर्योदय से पूर्व उठेंगे, थोड़ा बाहर चले जाओ, घर से बाहर निकल जाओ, चारपाई छोड़ो और खुले आकाश के नीचे पेड़ हों, वहाँ पर आप घूमें और प्रकृति के सामीप्य का एक आनंद प्राप्त करें, क्योंकि आत्मा को जो ये शरीर मिला है ये प्रकृति से मिला है। और जब हम प्रकृति के समीप जाते हैं तो हमारे मन में सुंदर विचारों का आगमन स्वतः ही हो जाता है, स्वतः ही, क्योंकि सुंदर विचार हमारे पास हैं। आत्मा मूल रूप से शुद्ध है, हमने उसको अशुद्ध कर दिया है। तो आप खुले आकाश के नीचे जाकर कुछ सुंदर चिंतन इस तरह करें, ये जीवन कितना सुंदर है, हर व्यक्ति जीवन की यात्रा पर चल रहा है, किसी को सुख मिल रहा है, किसी को दुख, किसी को हार प्राप्त हो रही है, किसी को जीत, किसी को मान मिल रहा है, किसी को अपमान मिल रहा है, ये मनुष्य के अपने कर्मों का परिणाम है, ये उसके अपने व्यवहार का ही परिणाम है। मुझे इस जीवन को आनंद से भरना है, मैं तो भगवान का बच्चा हूँ। सवेरे सवेरे आप विचार करें, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव है। मैं तो भगवान का बच्चा हूँ, भगवान के बच्चों को भला निराश होने की कहाँ आवश्यकता है, ये संसार तो एक सुंदर नाटक है, मैं तो इसका एक्टर हूँ, मुझे तो इसमें हीरो पार्ट बजाना है, हीरो एक्ट करने वाले भला डल कैसे हो सकते हैं। इस तरह के विचारों से अपने को एक्टिव करें, आप देखेंगे दो चार दिन ऐसा करने के बाद आपके जीवन में एक नई चेतना का संचार होगा, आपके अंदर सुंदर विचार आ जाएंगे और आप निश्चित रूप से उस अंधकार से निकल जाएंगे जिसमें आप जी रहे हैं। तो ये स्पिरिचुअलिटी है, इसको ही स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। स्पिरिचुअलिटी हम ये नहीं कह रहे कि आप मंदिर में चले जाओ, पूजा पाठ करो, भगवान के आगे हाथ जोड़ के कुछ मांग लो। आपको मांगना किसी से कुछ नहीं है, आपको अपनी शक्तियों को पहचानना है। देखिए, मैं आपके पास एक और सुंदर बात रख रहा हूँ, जीवन में हारता वही मनुष्य है जो अपनी शक्तियों को भूल जाता है। भगवान के बच्चे शक्तिहीन नहीं हो सकते, वो बहुत शक्तिशाली हैं। तो सवेरे उठकर आप ये अपने को याद दिलाओ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरे पास भगवान की शक्तियाँ हैं। तो आपके अंदर जो शक्तियाँ सोई हुई हैं वो जग जाएंगी और आपको बहुत एनर्जेटिक फीलिंग होगी और बहुत जल्दी आप इस मन की स्थिति से बाहर निकल जाएंगे। आपके तन में भी चुस्ती आएगी, आपके मन में भी चुस्ती आएगी। आपके अंदर जो सोए हुए टैलेंट्स हैं, टैलेंट्स आपके पास बहुत हैं, आपको ये भूलना नहीं चाहिए। आपके ब्रेन में ही अनेक शक्तियां भरी हुई हैं, इस तरह के संकल्पों से वो सब जागृत हो जाएंगी और आप एक नए जीवन की ओर देखेंगे बहुत अच्छी तरह। हमारी ये शुभ भावना है, आपका जीवन सुंदरता से भरा हुआ हो, योग्यताओं से भरा हुआ हो, आपको अपने जीवन में संपूर्ण सुख प्राप्त हो, आप बहुत एनर्जेटिक हो जाएं, सफलता आपके द्वार पर रहे, बस ऐसी ही शुभ भावनाएं आप भी अपने को रोज देते रहना। ओम शांति। आजकल जिम्मेदारियों को पूर्ण करना संसार में हर व्यक्ति के लिए एक बड़ी टेंशन बनता जा रहा है। माँ बाप के लिए परिवार की जिम्मेदारियों का वहन करना, एक अधिकारी के लिए अपने डिपार्टमेंट की जिम्मेदारियों को पूर्ण करना कठिन होता जा रहा है, भारी होता जा रहा है। इसका कारण हो रहा है कि कभी नीचे वाले सहयोग नहीं करते तो कभी ऊपर वालों का बहुत प्रेशर होता है, कामकाज का प्रेशर होता है, मनुष्य के अपने संस्कार और विचारों का भी इफेक्ट उसके मन पर पड़ता है। आप यदि किसी विशेष जिम्मेदारी को लिए हुए हैं तो जिम्मेदारियों को पूर्ण करने में आनंद का अनुभव करें, ऐसी कला आपको सीखने की आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक है सबसे पहले अपनी शक्तियों में आपको विश्वास रखना होगा, अपने साथियों में भी विश्वास रखना होगा, अपने कुछ एक्सपेक्टेशंस को समाप्त करना होगा और अपने मन को बहुत पीसफुल बनाना होगा। जिम्मेदारी पूर्ण करने वाले व्यक्ति के सामने कई चैलेंजेस होते हैं, कभी कभी बड़े काम उसके सामने आ जाते हैं, साथी सहयोग नहीं देते, साथियों का भी आपको सहयोग लेने की कला आनी चाहिए। इसके लिए आप उनके हर कार्य को अप्रिशिएट करें, उनको सहयोग करें। जब उनको आवश्यकता हो छोटी-छोटी चीजों में, उनको आप कोऑपरेट करें तो समय पर वो भी आपको कोऑपरेट करने लगेंगे। हमने देखा जो लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं उन्हें टेंशन में रहने की आदत पड़ जाती है। वो कहा करते हैं वी एंजॉय टेंशन, टेंशन ही नहीं है तो मजा नहीं आता। लेकिन हर बात को टेंशन बना देना, इससे संबंध बिगड़ते हैं, हमारी शक्तियां बिगड़ जाती हैं। आपको हर चीज को लाइटली लेना है। लाइटली लेने का अर्थ केयरलेस होने से नहीं होता। कोई बड़ा काम आपके सामने है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके सामने है, आप परिवार में हैं, आपके बच्चे की शादी है, आपकी लड़की की शादी है, आपको पूरी तैयारी करनी है, जिम्मेदारी है आपके ऊपर, आपका नाम मान शान भी दांव पर लगा हुआ है, कोई बड़ा काम है तो वो एक चैलेंज के रूप में आपके सामने खड़ा है। आप संकल्प रखो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब सहयोग करेंगे। ये है अपनी शक्तियों में विश्वास। और अगर आप स्पिरिचुअल हैं, यदि आप रिलीजियस व्यक्ति हैं, यदि आप भगवान में विश्वास रखते हैं, तो ये विश्वास कर लें कि वो भी आपका साथी है, वो भी निरंतर आपको मदद कर रहा है, वो आपके बिगड़े काम भी संवार देगा और उसके होते हुए आपका कोई काम बिगड़ेगा भी नहीं। सभी लोग संतुष्ट हो जाएंगे, सभी कार्य पूरी तरह से संपूर्ण हो जाएंगे। तो जितना आप जीवन में हल्के होंगे, जितना आप अपनी शक्तियों को पहचान के आनंदित स्थिति में रहेंगे और जितना आप अपने मन को शांत रखेंगे, तो जीवन में समस्याएं आने वाली, आप जिस जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं उसके सामने जो चैलेंज आपके सामने हैं, उनकी एक क्लियर टचिंग, उनका एक क्लियर समाधान आपकी बुद्धि में आता रहेगा और सहज भाव से आप पार कर लेंगे। देखिए टेंशन मनुष्य को कहाँ कहाँ होती है। काम ज्यादा हो, करने वाले कम हो, तबीयत खराब हो लेकिन कुछ काम भी करने हो, और भी कई परिस्थिति आती है। आपके पास पैसा कम हो, आवश्यकता ज्यादा हो, आपने कुछ अरेंज किया है, मैरिज करनी है आपको बच्चों की, आपके पास पैसे का अभाव है, आपको कदम कदम पर कठिनाइयां आ रही हैं, आपको समय पर बीमारी हो गई, जो आपने तैयारी की है लोगों ने समय पर मना कर दिया, ऐसे में मनुष्य को टेंशन हो जाती है और वो सोचने लगता है कि अब क्या होगा और कैसे होगा। इसलिए बहुत लोग जिम्मेदारी लेने से ही कतराने लगते हैं। अच्छे अच्छे काम जहाँ चलते हैं तो लोग कहते हैं भाई हम काम तो कर लेंगे लेकिन हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, जिम्मेदारी तुम लो। तो ये भी अच्छी बात नहीं है। जिम्मेदारी हमें चुस्त रखती है, जिम्मेदारी हमें अनुभवी बनाती है, जिम्मेदारियाँ हमारी इनर पावर्स को बढ़ाती हैं। इसलिए जिम्मेदारियों से घबराना नहीं चाहिए लेकिन अपने टेंशन को मैनेज करना, यही एक कला है। इसके लिए आप अपने अंदर कुछ ना कुछ विचार रख लें, सुंदर लाइटली होकर सॉफ्टली बहुत आत्मविश्वास के साथ आप कार्य करते रहें तो कोई भी चैलेंज सहज ही पार हो जाएगा, आपकी विजय होती रहेगी। और जैसे जैसे आपको जीवन में अच्छे अनुभव होते जा रहे हों कि हर चैलेंज को आप पार कर रहे हैं, तो आपका विश्वास और बढ़ता जाएगा कि अगले कार्यों में जो चैलेंज आएंगे हम उन्हें भी सहज रूप से पार कर लेंगे। जिम्मेदारियों में बहुत सफल होने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि आप अकेले न हो जाएं, आप अपने साथी बनाएं, दो चार साथी बनाएं, उनमें विश्वास रखें और अगर वो योग्य नहीं हैं, उन्हें योग्यता सिखाएं आप, उन्हें कुछ अच्छी बातें बताएं आप। ये कभी ना सोचें कि वो सीखे सिखाए हों, वो परफेक्ट हों, वो कोई गलती ना करें, वो गलती भी कर सकते हैं, गलती से मनुष्य ज्यादा सीखता है। आप उनकी गलतियों को करेक्ट कराते चलें बहुत अच्छी भावनाओं के साथ, तो आप देखेंगे वो आपकी जिम्मेदारी संभाल लेंगे, आप जिम्मेदारी संभालते हुए बिल्कुल हल्के रहेंगे, आपको इतने अच्छे अच्छे साथी मिल जाएंगे, आपकी इनर पावर्स भी इतनी बढ़ जाएगी कि जिम्मेदारियों को आप एंजॉय करेंगे और खेल की तरह पूरा कर लेंगे। याद रखना है कि अगर आप बहुत टेंशन में रहते हैं, अगर आपके मन में निगेटिव विचार बहुत उठते हैं, अगर आप ज्यादा ही सोचते हैं, जिम्मेदारी कोई आ गई, कोई काम आ गया और आप सोच ही रहे हैं, आपको नींद भी नहीं आ रही है, आपको भोजन करने की फुर्सत भी नहीं मिल रही है, तो आप जान लें इससे आपकी इनर पावर कमजोर होती जा रही है, जिसका इफेक्ट आगे चलकर आपकी सफलताओं पर आएगा, आपकी हेल्थ पर आएगा, आपके रिलेशनशिप्स पर आएगा। इसलिए बहुत लाइट रहकर एंजॉय करें। जिम्मेदारी अच्छे व्यक्तियों को मिलती है, जिम्मेदारी योग्य व्यक्तियों को मिलती है, जिम्मेदारी भाग्यवान लोगों को मिलती है। इसको अपॉर्चुनिटी समझकर बहुत आनंद पूर्वक इसको फेस करें, इसको पूर्ण करें और आगे बढ़ें। अपने मन के सभी बोझ आप अपने परम पिता को समर्पित करने की आदत बनाने, जिम्मेदारी पूर्ण करने आप चल रहे हैं तो ये दो संकल्प साथ ले लें, सर्वशक्तिवान भगवान मेरे साथ है, और अपने मन के बोझ सारे उसे सौंप दें और संकल्प कर लें, जो भगवान सारे संसार के बोझ उठाता है वो मेरे बोझ भी अवश्य उठा लेगा। ये चीज आपको हल्की रखेगी और आपको फील होता रहेगा कि ईश्वरीय शक्तियाँ आपके साथ काम कर रही हैं, आप अकेले काम नहीं कर रहे हैं और बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी भी निर्विघ्न रूप से सहज भाव से हंसते हंसते पूर्ण हो जाएगी, कोई विघ्न भी नहीं पड़ेगा। इसलिए बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों में अपने परम पिता को अपना साथी बनाना और उसको सब कुछ समर्पित करके चलना एक सर्वोत्तम विधि है। जीवन को हर व्यक्ति संपूर्ण देखना चाहता है, अपने शरीर को भी और अपने स्वास्थ्य को भी, लेकिन कभी कभी मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्यवश ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जब उसका किसी एक्सीडेंट में हाथ पैर चला जाता है, या कोई बचपन से ही हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, या किसी को और कोई पोलियो हो जाता है, दोनों पैर चले जाते हैं किसी बीमारी के कारण। ऐसी स्थिति में यदि आपके पास आपके परिवार में किसी को ऐसी स्थिति से गुजरना पड़ रहा है तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि अभी भी आपके पास एक सुंदर बुद्धि है, एक बहुत अच्छा मन है, सोचने की शक्ति है, आपके अंदर बचपन से जो टैलेंट्स थे वो भी आपके पास हैं, उनका आपको प्रयोग करना है। इसलिए जीवन में कुछ भी हो जाए, कैसा भी शरीर आपका हो जाए, आप ध्यान रखें आपको निराश नहीं होना है। अब भी आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सुंदर अवसर हैं जो आपकी इंतजार कर रहे हैं, और आप संसार को दिखा सकते हैं, एक चैलेंज के रूप में दिखा सकते हैं कि ये सब कुछ होते भी आपने बड़े बड़े काम कर दिए, आपको कोई हरा नहीं सका। आपने सुना होगा एक लंगड़ा व्यक्ति एवरेस्ट पे चढ़ा, आपने सुना होगा एक बिना हाथ के व्यक्ति ने जिसको केवल पैर पैर थे वो संसार का बहुत बड़ा फोटोग्राफर बना, आपने सुना होगा ऐसे अनेक लोगों की कहानियां जिन्होंने अपनी टांगे खो दी, अपना हाथ खो दिया, ना हाथ है ना पैर है, स्टिल वो बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। तो हम कभी भी निराश ना, एक चीज नहीं है सबको तो दोनों पैर हैं, मुझे नहीं है तो मैं तो बेकार हो गया, ये आपको नहीं सोचना है। सबको तो दो हाथ हैं, मेरे को तो कुछ हाथ ही नहीं, मैं तो डिपेंडेंट हो गया, दूसरों पर आधारित हो गया, मैं भोजन भी कुछ खुद नहीं खा सकता, स्नान पानी भी खुद नहीं कर सकता, क्या मेरा जीवन है, इससे तो मैं मर जाऊं तो अच्छा है। ये निराशा भरे संकल्प आपके जीवन की खुशी को कम न करें। आपने पढ़ी होगी एक व्यक्ति कहानी जिसके दोनों हाथ कट गए थे, अब उसने दूध का काम शुरू किया, उसकी पत्नी भी थी, पत्नी उसको छोड़कर नहीं गई, पत्नी ने उसको सहयोग दिया और वो रोज अपने कंधे पर लकड़ी में दोनों तरफ दूध के केन बांधकर बाजार ले जाता था, और क्योंकि उसको हाथ नहीं थे तो लेने वाले उस पर बहुत दया की दृष्टि रखते थे, और देखते देखते उसका दूध बिक जाता था। इससे उसने अपने परिवार को चलाया, अपने बच्चों की पालना की, जीवन में निराशा को नहीं आने दिया। हमारे पास एक युवक आता है, आपको भी उससे प्रेरणा लेनी है, इंजीनियरिंग किया हुआ, किसी एक्सीडेंट में उसके दोनों पैर कट गए, मेरे पास आता है अभी भी, मैं उससे पूछता हूँ अब तुम्हारी मानसिक स्थिति क्या है, निराशा तो नहीं है, तो मुझे बताता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखिए यही है जो आपको भी अपने जीवन में अपनानी है, हर व्यक्ति को अपनानी है, हमें उन चीजों को स्वीकार कर लेना चाहिए जिन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। जिन चीजों को हम बदल नहीं सकते उन्हें हम स्वीकार कर लें और अपना एक नया मार्ग निकाल दें। उसके दोनों पैर कट गए, व्हील चेयर पे वो रहता है, इंजीनियरिंग किया हुआ है। अब घर में उनके बड़ा कारोबार है, सारा अकाउंट का काम वो करता है। मैंने उससे पूछा, सारा दिन कैसे बीतता है? का बहुत सुंदर बीतता है, खेतों पर चला जाता हूँ अपनी जीप में बैठकर, सारा अकाउंट मैं संभालता हूँ, पैसे का लेन देन मैं करता हूँ, मेरी योग्यताएं भी जो मैंने स्टडी की थी जिसको लोग जॉब सेटिस्फेक्शन कहते हैं वो भी पूर्ण हो रहा है और मेरे जीवन में किसी भी तरह की निराशा नहीं है। तो मैं आपसे कहूँगा, जो भी आपकी स्थिति है, शारीरिक स्थिति है, यदि आपका मन स्ट्रांग है, यदि आपके पास सुंदर बुद्धि है, तो आप किसी से कम नहीं है। भगवान को भी अपना साथी बना लो, अपने जीवन में उमंग उत्साह को भी अपना साथी बना लो, अपने व्यवहार को इतना मधुर सुंदर बिना क्रोध के रखो कि सभी लोग आपके सहयोगी बने, सभी आपसे प्यार करें, कोई भी आपको ठुकराए नहीं। देखिए, जो मनुष्य ठुकराया जाता है उसका कारण पूर्ण रूप से सच्चे अर्थों में आप देखें उसका अपना स्वभाव होता है, उसका अपना व्यवहार होता है। नहीं तो हर व्यक्ति दूसरे को प्रेम देना चाहता है। तो आप यदि ऐसी किसी स्थिति से गुजर रहे हैं, आंखों की आपको बहुत तकलीफ हो गई है, आप में ब्लाइंडनेस आ गई है, आप बोल नहीं पा रहे हैं ठीक से, आप तुतलाते हैं, या और कोई शारीरिक अंग आपका भंग हो गया है, तो आप निराश बिल्कुल न हो। एक चीज गई है, दूसरी चीज आपके पास है। आपको याद रहना चाहिए, ये आत्मिक शक्तियाँ केंद्रित अगर हो जाएं, तो मनुष्य बड़े बड़े काम कर लेता है। आपने ऐसे कई नेत्रहीन लोगों को देखा होगा जो बहुत बुद्धिमान है। हमारे पास एक प्रोफेसर आए जो नेत्रहीन थे, हिंदी में जिन्होंने एमए और पीएचडी की थी, जो प्रोफेसर थे उनको सारा हिंदी साहित्य याद था, जो बहुत अच्छे कवि भी थे और जो म्यूजिक डायरेक्टर भी थे। आप हैरान होंगे, हर चीज उनको याद थी, बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन वो हर चीज का करते थे अपने विद्यार्थियों के सामने। तो उनको नेत्र नहीं थे लेकिन बुद्धि बहुत सुंदर थी। अगर आपको एक चीज नहीं है तो आपको पता होना चाहिए आपके पास दूसरी चीज बहुत उत्तम है और लोगों से बहुत ज्यादा है, श्रेष्ठ है। आप उसका प्रयोग करें और जीवन में आगे बढ़ते चले, आपका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा हो। जो बिल्कुल हेल्दी हैं, जिनको दोनों हाथ दोनों पैर आंख कान नाक मुख सब है, वो आपको देखकर प्रेरणा लें कि देखो इनको ये चीज नहीं है, स्टिल ये बहुत आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पास तो सब कुछ है, हम भी बहुत आगे बढ़ेंगे। याद रखेंगे, जो स्वयं को स्वयं मदद करते हैं भगवान भी उन्हें मदद करता है। अपने पढ़ी होगी इंग्लिश की एक कहावत, गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प देमसेल्फ्स। तो हम अपने को मदद करें, जो भी आपके पास है उसका सदुपयोग करने लगे। अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप घर में बैठकर रखवाली तो कर सकते हो। अगर आपके पास एक चीज नहीं है, घर के कार्यों में दूसरी तरह से आप सहयोग दे सकते हैं। आप दुकान पे केवल बैठ सकते हैं तो आप केवल बैठ जाइए, वहाँ आपके बैठने से सिक्योरिटी रहेगी। आप सामान को इधर उधर कर लीजिए, सेटिंग कर दीजिए, तो कुछ न कुछ आप करते रहें, अपनी योग्यताओं को बढ़ाते चले, तो आपके जीवन में निराशा भी नहीं होगी और निश्चित रूप से आप जीवन को औरों की तरह एंजॉय कर सकेंगे। ओम शांति। ये संसार सभी मनुष्यों का एक समूह है, सभी लोग अपने जीवन की यात्रा पर चल रहे हैं, सभी एक दो के साथ चल रहे हैं, कोई भी अकेला नहीं है, न कोई अकेला चलना चाहता न चलना चाहिए। हम एक दूसरे के साथी हैं, हम एक दूसरे के सहयोगी हैं, हम एक दूसरे को लिफ्ट देते हुए, एनकरेज करते हुए, अप्रिशिएट करते हुए आगे बढ़ना होता है। परंतु यदि आपको ऐसा फील होता है कि आप बिल्कुल हेल्पलेस हैं, कोई भी काम आप करना चाहते हैं तो दूसरे लोग आपको मदद नहीं करते, आपके फ्रेंड्स भी आपसे अलग हो जाते हैं, मेरे पास ऐसे ऐसी कईयों की बातें आती हैं कि कोई स्टूडेंट पीएचडी कर रहा है, लोग उसे ईर्ष्या करते हैं, उसे दूर होने लगते हैं और उसे किसी भी तरह की मदद करना नहीं चाहते, उसे अकेला छोड़ देते हैं। कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, लोग उससे ईर्ष्या करने लगते हैं और सोचते हैं ये नीचे गिरे, उसको हमेशा ही डिस्करेज करेंगे। कोई उसको साथ नहीं देता है। आपको जीवन के किसी भी फील्ड में यदि ऐसा फील होता है कि आप हेल्पलेस हैं, तो मैं आपको कुछ सुंदर बातें कहना चाहता हूँ। वास्तव में मनुष्य यदि स्वयं एनर्जेटिक है, मनुष्य यदि स्वयं अपने को समर्थ बना लेता है, तो सब उसके साथ साथ चलते हैं। अकेला लोग उसे ही छोड़ते हैं जो स्वयं को खाली महसूस करता है। आप स्वयं को भरपूर करें, आप हर चीज को एंजॉय करें। मैं आपको यहाँ एक बात कहना चाहूँगा, आप अपने हर कार्य को एंजॉय करें। हर कार्य एंजॉयमेंट के लिए है। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप कंपटीशन दे रहे हैं, अगर आप थेसिस लिख रहे हैं, अगर आप किसी और मान लो इंटरव्यू में ही अपीयर होने जा रहे हैं और किसी चीज को आपको फेस करना है, मन बना लें मुझे इसको एंजॉय करना है। हर कर्म की सबसे पहली चीज है उसको एंजॉय करना। तो आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे और आप देखेंगे कि सब आपको साथ दे रहे हैं। बहुत सुंदर स्पिरिचुअलिटी में सिद्धांत है कि अगर हम अपनी मनोस्थिति को सुंदर बनाए रखते हैं तो अनेक लोग हमारे साथी बन जाते हैं, और अगर हम अपनी मनोस्थिति को अच्छा नहीं बनाते तो लोग हमसे दूर होने लगते हैं। हाँ, संसार में आप ये भी देखते होंगे जो लोग तेज तराक हैं, जो लोग चालाक हैं, आम भाषा में जिसको कहा जाता है, जो आगे पीछे घूमते रहते हैं बड़ों के, लोगों को लगता है कि इनको सब साथ दे रहे हैं, परंतु अगर सब उनको साथ भी दें और वो स्वयं खाली हों तो दूसरों के साथ देने का भी उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। जब वो जीवन में आगे कहीं भी फील्ड में जाएंगे वो अपने को खाली पाएंगे, उनको लगेगा हमारे पास कुछ नहीं, दूसरों की मदद से ही हमने सब कुछ पाया है। आप अपने को योग्य बनाएं, आप अपने को भरपूर करें। आपको याद दिला दूं, आप एक बात अपने मन में दोहराया करें, मैं भगवान का बच्चा हूँ, सचमुच वो मेरा पिता है। स्वीकार कर ले, केवल मंदिर में जाके हाथ जोड़ने के लिए नहीं, अपने घर में रहते हुए अपने जीवन को यापन करते हुए आप सिंपली इस बात को स्वीकार कर ले, भगवान मेरा पिता है, सचमुच वो सच्चा पिता है। और भगवान जैसा पिता क्या अपनी संतान को हेल्प नहीं करेगा? अगर आप उससे नाता जोड़ लें, उसे आपको हेल्प मांगने की जरूरत नहीं। एक सच्चा पिता अपने बच्चों को स्वतः ही हेल्प करता है, आपको उसके आगे हाथ जोड़ने की भी जरूरत नहीं। तो भगवान की हेल्प आपको मिलने लगेगी, फिर आपको संसार में किसी की भी हेल्प की आवश्यकता नहीं होगी। आप प्यासी नजरों से किसी की ओर भी नहीं देखेंगे कोई मुझे हेल्प करे, बल्कि सबको आप हेल्प करने वाले हो जाएंगे, क्योंकि सर्वशक्तिमान भगवान जो सारे संसार को मदद कर सकता है वो आपका मददगार बन गया है। स्वीकार कर लो इस सत्य को, ना आप अकेले हो ना आप हेल्पलेस हो, आपके साथ सर्वशक्तिमान भगवान की मदद है सदा ही। उससे अपने मन का केवल नाता जोड़ लो और देखो कैसे उसकी हेल्प हर कदम पर आपको प्राप्त होती है। जहाँ भी आपको जीवन में निराशा आ जाए, कहीं लगे मुझे किसी के साथ की जरूरत है, आप किसी की ओर भी नहीं देखना, सीधा अपने परम पिता को अपना मित्र बना लो, उसकी ओर ही देखना, उसे अपना नाता जोड़ना और संकल्प दे देना कि मुझे अब आपकी मदद की जरूरत है। आप देखेंगे मदद आपको मिलने लगती है। इस तरह आप भगवान के साथ जुड़ जाएं और जीवन के हर मोमेंट का आनंद लें, दूसरों की ओर प्यासी नजरों से न देखें। मैं स्पष्ट कह दूं, अगर आप दूसरों की ओर बार बार प्यासी नजरों से देख रहे हैं तो आप तो दीनहीन और बेगर बन गए हैं। आपका मनोबल कैसे बढ़ेगा? आप जीवन में एनर्जेटिक कैसे होंगे? इस चीज से बाहर निकल जाओ, भगवान आपका साथी है, वो आपको मदद कर रहा है। और ये भी सत्य है जिनको भगवान मदद करता हो सारा संसार भी उनको मदद करने लगता है। ये भी आपको दूसरा अनुभव होगा। वास्तव में कभी कभी अपने ही मन की ये निगेटिव फीलिंग मनुष्य के अंदर रहती है, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई हेल्प नहीं करता, मैं तो जीवन में अकेला हो गया हूँ। आप अपनी इस निगेटिव फीलिंग से भी बाहर आ जाए रोज सवेरे उठकर आप ये सुंदर विचार अपने मन को दिया करें, भगवान मेरा साथी है, वो मेरा सच्चा परम पिता है, वो मेरे मन का मीत है, संसार में कोई मुझे साथ दे या ना दे वो तो मुझे हेल्प करता ही है, उसकी हेल्प में आप विश्वास कर लें, वो सदा मेरे साथ रहता है। बस ऐसे सुंदर विचार आप सवेरे सवेरे अपने मन में किया करें, आपका चित्त खुशी और प्रसन्नता से भरता जाएगा। न केवल आप परमात्मा के समीप पहुंचते जाएंगे लेकिन आप स्वयं के भी समीप आते जाएंगे, और एक दिन आपको महसूस होगा कि मेरे अंदर ही बहुत शक्तियां विद्यमान हैं, मुझे किसी की हेल्प की आवश्यकता ही नहीं है, मैं स्वयं समर्थ हूँ सब कुछ करने के लिए। ऐसी मनोस्थिति आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कभी भी ऐसे निगेटिव विचारों से आपको उदास निराश नहीं होना है, भगवान आपका साथी है। आप अपने मन में ये गीत गाते रहना, ईश्वर मेरे साथ है, बस आप सदा ही उसकी मदद के पात्र अनुभव करेंगे। ओम शांति। हर मनुष्य जीवन में संबंधों को बहुत महत्व देता है, संबंधों की मधुरता हमारे जीवन की ब्यूटी है। परंतु आप जानते हैं जो व्यक्ति क्रोध करता है उससे तो सभी दूर रहना चाहते हैं। आपको यदि क्रोध आता है तो आप विचार करें कि क्या मुझे दूसरे का क्रोध अच्छा लगता है, क्या मैं किसी को क्रोधित होते देखते हुए अच्छा महसूस करता हूँ। आपका उत्तर होगा कदापि नहीं। तो जैसे हमें दूसरे का क्रोध अच्छा नहीं लगता, जैसे हम ये नहीं चाहते कोई क्रोध करके हमसे बुरा व्यवहार करे, ऐसे ही हमें सोचना होगा कि हमारा क्रोध भी दूसरों को अच्छा नहीं लगता है। क्रोध सचमुच एक अग्नि है, आप इस अग्नि से स्वयं को मुक्त करें। आप सोच लें मुझे जीवन में इस संसार में आकर बड़े बड़े कार्य करने हैं, मेरा तो जन्म ही बड़े बड़े कार्य करने के लिए हुआ है। इसलिए आपको अपनी आंतरिक शक्तियों को बहुत बढ़ा देना है, उन्हें केंद्रित कर देना है। याद रखेंगे आप, क्रोध हमारी विवेक शक्ति को जलाकर नष्ट कर देता है। क्रोध जब किसी मनुष्य को आता है तो उसके मुख से कटु वचनों की बरसात होने लगती है, विष उगलने लगता है। क्रोधी मनुष्य उसके मुख से मानो एक काला गंदा धुआं निकलने लगता है जिससे दूसरों का दम घुटने लगता है। क्रोध बुरी चीज है। क्रोध करने के बाद हर व्यक्ति पछताता है, आपको अनुभव होगा। क्रोध एक दो बार जीवन दिनचर्या में आ जाए तो मन की एकाग्रता, मन की शांति नष्ट हो जाती है। बहुत देर तक आपका कामकाज में ही मन नहीं लगेगा, सब आपसे दूर दूर रहेंगे, सब आपसे डरे डरे रहेंगे। इसलिए यदि आप सोचते हैं कि क्रोध तो काम कराने का हथियार है तो इस गलत मान्यता को आप सदा के लिए छुट्टी दे दें। प्रेम ही सबसे बड़ा हथियार है, जो संगठन को एकता के सूत्र में बांधता है, जो परिवार में प्रेम का साम्राज्य स्थापित करता है, जो एक दूसरे को अपनेपन की फीलिंग देता है। इसलिए आप संकल्प कर लें, क्रोध की अग्नि में मुझे नहीं जलना है। आपको जरूर महसूस होता होगा कि क्रोध तो बहुत बुरी चीज है और निसंदेह आप भी इससे मुक्त होने के लिए सोचते होंगे। सोचते हैं ना? अवश्य सोचते हैं। सवेरे आप थोड़ा सा जल्दी उठें। हो सकता है आपने कई बार क्रोध को छोड़ने की प्रतिज्ञा भी कर ली हो, लेकिन क्रोध आपको न छोड़ रहा हो। इसकी विधि एक छोटी सी, छोटा सा उपाय मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। आप सवेरे थोड़ा जल्दी उठें, अपने से बात करें, मैं तो आत्मा हूँ ये शरीर नहीं, और आत्मा की मूल नेचर शांति है, पीसफुल आत्मा। आप अपने को याद दिला दें, देखिए, कुछ दिन आप अगर ये अभ्यास करके देख लें तो आपको अपने क्रोध को जीतने में काफी मदद मिलेगी। सवेरे उठते ही आप संकल्प करना, मैं तो भगवान का बच्चा हूँ। भगवान तो शांति का सागर है, उसकी संतान होने के नाते मैं भी शांत हूँ। शांति तो मेरा श्रृंगार है, शांति तो मेरे जीवन की ब्यूटी है। और आप सात बार संकल्प कर लेंगे, मेरा चित्त शांत हो गया है, मैं क्रोध मुक्त हूँ, मेरा चित्त शांत है। सात बार गुड फीलिंग दें अपने को, मेरा चित्त पूरी तरह से शांत है, मैं क्रोध से मुक्त हूँ। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस विचार को स्वीकार करने लगेगा कि ये क्रोध से मुक्त है, और आपको अपने क्रोध को जीतने में बहुत ही मदद मिलेगी। आप अगर एक विद्यार्थी हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसा मैंने कहा, क्रोध बुद्धि की शक्ति को छीन करता है। अगर आप अपनी पढ़ाई में बहुत होशियार होना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं सदा आप इंटेलिजेंट व्यक्ति रहें, तो मन को शांत कर लें, क्रोध को इस तरह सदा के लिए विदाई दे दें। क्रोध आता है, बच्चों को भी आता है, बड़ों को भी आता है, स्टूडेंट्स को भी आता है, जिसके पास जिम्मेदारी होती है उसको भी बहुत आ जाता है। लेकिन आप एक संकल्प ही रख लें, यह अग्नि है, मुझे इस अग्नि में स्वयं को जलाना नहीं है। तो क्रोध की अग्नि को आप इन विचारों की अग्नि से शांत करते चलेंगे। यदि आप बड़े हैं, आप बाप हैं कुछ बच्चों के, और आपके बच्चे ये महसूस करते हैं कि आपको बहुत क्रोध आता है, क्रोध में आप उन्हें मारपीट भी कर देते हैं, तो आपको याद रखना है इसका इफेक्ट बच्चों के भविष्य पर बहुत बुरा पड़ता है। मैंने ऐसे कई युवक देखे जो मेरे पास आए, जिनके जीवन में उदासी छाई हुई रहती थी, जिनको जीवन में खुशी नहीं रहती थी, जिनको जीवन में किसी से अपनेपन की फीलिंग नहीं होती थी, मेरे पास इस समस्या को लेकर आए। मैंने जब कारण जानने चाहे तो बहुत सारी बातें होने के बाद ये पता लगा कि बचपन से ही बाप ने क्रोध के कारण हमें बहुत दबाया है, तो हमारी सारी योग्यताएं दब गई, हमारी बुद्धि का विकास हुआ, हम जैसे खुले वातावरण में श्वास नहीं ले पाए हैं, एक दबाव सदा ही, एक डर सदा ही अपने अंदर महसूस करते रहे। तो आपका क्रोध आपकी संतान के भविष्य के लिए बहुत खतरनाक होता है। इसको ध्यान में रखते आप प्रेम की मूर्ति बन जाएं, आप प्रेम की गंगा अपने परिवार में बहाएं। आप यदि अधिकारी हैं, आपको बहुत क्रोध आता है, तो आपको जानना चाहिए आपका काम बिगड़ेगा, आपके साथ ही आपके जो नीचे काम करने वाले हैं वो आपको सच्चे मन से सहयोग नहीं देंगे, आपको बद्दुआएं देते रहेंगे, आपका क्रोध संगठन की शक्ति को छिन्न भिन्न कर देगा, और इससे आपको कार्य कराने में सदा ही टेंशन रहेगी। इसलिए आप अपने क्रोध को शांत करें, रोज अपने ऑफिस में जब आप अपनी चेयर पर जाकर बैठें, तो संकल्प कर लेना, मैं तो शांत स्वरूप हूँ, मुझे तो सबको प्रेम बांटना है। इस प्रेम के रिटर्न में वो आपको अपने कार्यों से सब संतुष्ट करेंगे, आपके ऊपर कोई भी दबाव नहीं रहेगा। याद रखना चाहिए, क्रोध आपके हाई ब्लड प्रेशर का कारण है, क्रोध अनेक तरह की टेंशन को जन्म देता है। चित्त को शांत करें, आप स्वस्थ रहेंगे, आप इस जीवन का पूरी तरह से आनंद ले सकेंगे। यदि आप एक बिजनेसमैन हैं, यदि आप किसी कंपनी में, फैक्ट्री में बड़े ऑफिसर हैं, जनरल मैनेजर हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो आपकी स्नेह की दृष्टि आपकी पर्सनैलिटी को चमकाएगी, आपकी शुभ भावनाएं दूसरों को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराएगी, आपका बढ़ा हुआ स्वमान सबको आपके समीप लाएगा। लेकिन यदि आप क्रोध करते हैं, क्रोध के साथ अहंकार भी मनुष्य का जुड़ा होता है, क्रोध में आप दूसरे को बुरे शब्द बोलते हैं, अपने नीचे के अधिकारियों को, तो आप जानना चाहिए, एक बार यदि आप किसी को डांटते हैं तो उसकी क्षमताओं में, उसकी एफिशिएंसीज में गिरावट आती है, उसके टैलेंट्स दबने लगते हैं। इसलिए आप प्रेम का साम्राज्य करें, डांट डपट का नहीं, क्रोध और अहंकार का नहीं। इससे आपकी जो कंपनी है, आपकी जो फैक्ट्री है, उसमें सभी लोग एक पारिवारिक फीलिंग से रहेंगे, आपको अपना बड़ा मानेंगे, पिता के समान समझेंगे, लगेगा उन्हें हमारे ये अधिकारी हमारे सिर के ऊपर छत्र छाया है। और आपको मालूम ही होगा वो आपकी कंपनी को सफल करने के लिए, आपके बिजनेस को सफल करने के लिए अपना संपूर्ण डेडिकेट कर देंगे। तो क्रोध बुरा है, इसकी बुराई को समझते हुए अपने जीवन के लिए, अपने सुखों के लिए, परिवार की शांति के लिए, कार्य क्षेत्र पर हमें इससे मुक्त होना ही है। मेरी आपके लिए शुभ भावना है, आपका चित्त शांत हो, आप इस क्रोध महाशत्रु पर विजय प्राप्त करें और अपने परिवार में, अपने डिपार्टमेंट में प्रेम की सरिता बहाएं। ओम शांति। संसार में चारों ओर यदि आप नजर घुमाकर देखें तो अनेक मनुष्य जिनके पास संपत्ति बढ़ रही है, जिनके पास साधन बढ़ रहे हैं और सुख सुविधाएं बढ़ रही हैं, उनकी इच्छाएं भी बढ़ती जा रही हैं। इच्छाएं ऐसी चीज हैं जो एंडलेस हैं। इच्छाएं मनुष्य के दुखों का कारण है। इच्छाएं मनुष्य के मन को भटकाती हैं, उसकी एकाग्रता को नष्ट करती हैं। एक इच्छा पूर्ण होगी, दूसरी उत्पन्न हो जाती है। आप अपने को चेक कर लें, अंतर्दृष्टि डालें अपने ऊपर और देखें। देखिए संसार में इच्छाएं और एक्सपेक्टेशंस दो चीजें हैं, डिजायर्स एंड एक्सपेक्टेशंस। ये हर मनुष्य को होती ही है। संसार में कंपटीशन बहुत है, हमारे सामने हमारे साथी, आपका फ्रेंड सर्किल, आपके पड़ोसी, उनके घर में बहुत कुछ होगा, उनके बच्चों के पास बहुत कुछ होगा, उनके घर के सामने अच्छी अच्छी कारें खड़ी होंगी, अच्छे अच्छे वाहन खड़े होंगे, तो आपको भी संकल्प आएगा कि हमारे पास भी ऐसा हो। पर आप ये अच्छी तरह से जान लें, चाहे तो अनुभव करके देख लें कि अगर आपके पास वो चीजें आ जाएं तो भी आप पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, इच्छाएं और जागृत हो जाएंगी। तो हम आपको ये रहस्य बता देना चाहते हैं कि ये सांसारिक इच्छाएं आत्मा को कभी तृप्त नहीं कर पाती हैं। इसलिए अगर आप सुखी रहना चाहते हैं, अगर आप जीवन में खुशी का भंडार बनना चाहते हैं, तो अपनी इच्छाओं और एक्सपेक्टेशंस को कम करते चले। मनोविज्ञान में ये बहुत सुंदर सिद्धांत है कि अगर आपकी एक्सपेक्टेशंस 100 हैं, तो आपकी खुशी 0 पर आ जाएगी। अगर आप अपनी खुशी को 100 बनाना चाहते हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस को 0 कर दो। तो हम इच्छाओं और कामनाओं के गुलाम न बने। मैं देखता हूँ, आप भी अपने को देख लें। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप बच्चों को देख सकते हैं अपने घरों में, उनको कुछ लेने की इच्छा हो गई, बस उनको जिद हो जाती है, मम्मी मुझे तो ये चीज चाहिए। और अगर जब तक उन्हें वो चीज नहीं दी जाती, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, कॉस्टली हो या बिल्कुल सिंपल हो, तब तक उन्हें चैन नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनकी एकाग्रता नहीं होती है, कोई भी चीज उन्हें खुशी नहीं देती है। इसको हम कहते हैं इच्छाओं का गुलाम हो जाना। ऐसे बड़े लोग भी कई देखने में आते हैं, कोई उन्हें इच्छा हो गई, चाहे वो खुद कमाते हैं, जब तक वो इच्छा उनकी पूर्ण नहीं होगी, उनकी खुशी नहीं रहती, वो उन्हीं विचारों में सदा घूमते रहते हैं, कभी उनको टेंशन हो जाती है, कभी वो परेशानी फील करते हैं। ये है इच्छाओं की गुलामी। याद रखें, क्रिएटर आप हैं, ये सब आपकी क्रिएशन है। क्रिएटर क्रिएशन के गुलाम नहीं हो सकता है। अपने को संभालें, आप स्वयं मालिक हैं। आप इच्छाओं का त्याग करें, साधन आपके पीछे पीछे आ जाएंगे। आप मनुष्यों से जो कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, उसको भी छोड़ दें। गीता में इसके लिए बहुत अच्छी बातें आ गई हैं, अनेक अध्याय भरे पड़े हैं। निष्काम हो जाओ। किसी को आप बहुत प्यार करते हैं, उससे रिटर्न में प्यार की कामना न करो। किसी को आपने बहुत सहयोग दिया है, आप उससे सहयोग न मांगो, इच्छा भी न रखो कि वो आपको भी सहयोग दे। तो हम जो कुछ काम करते हैं, निष्काम भाव से करें, सेल्फलेस मोटिवेशन से करें। इससे हमारा चित्त सदा प्रसन्न रहेगा। तो मैं आपसे कहूँगा, आप इच्छाओं के गुलाम न बने और अगर आपको इच्छाएं रखनी हैं, तो अपने जीवन के लिए आप सुंदर इच्छाएं रखें। जैसे मुझे बहुत महान कार्य करने हैं, ये इच्छा। मुझे सबको सुख देना है, मुझे सबको प्यार बांटना है, मुझे सबको समझते हुए उनको गाइड करना है। जो लोग निराश हैं, जो लोग पीछे हट रहे हैं, मुझे उनको मदद करनी है ताकि वो भी अपने जीवन में कुछ अचीव कर सकें। ऐसे सुंदर विचार, ऐसी सुंदर इच्छाएं आप अपने मन में रखेंगे, इनको हम कहेंगे श्रेष्ठ कामनाएं। ये हमारी श्रेष्ठ कामनाएं हमें भी बहुत सुख देती हैं और इनसे दूसरों को भी बहुत फायदा होता है। तो अपने माइंड को बहुत ब्रॉड बनाएं आप। अगर इच्छाओं की गुलामी आपके पास है, तो इस गुलामी से आप बाहर आ जाएं। अपने चित्त को आप शांत करें। मैं आपके सामने पुनः वही बात रख देता हूँ कि रोज सवेरे उठकर 10 मिनट 15 मिनट आप अपने को चार्ज करें। न तो उससे ही आप टीवी देखें, न नेट खोलें, न अखबार पढ़ें, न और कोई चीज। ये नहीं उठते ही चाय की ओर चल दिए, उठते ही कोई टेंशन मोल ले ली अपने मन में, उठते ही कोई समस्या के बारे में बात करने लगे आपस में, उठते ही कई लोग क्रोधित हो जाते हैं, ये नहीं किया वो नहीं किया। उठते ही 10 मिनट आपके पास एक अनमोल समय है। ये अनमोल समय आपके जीवन के लिए खजाना है, इसे खजाना मान लो। यदि आप रोज 10-15 मिनट सवेरे उठकर सुंदर विचारों से अपने अंतर्मन को भरने लगे, तो आप जीवन में वहाँ पहुँच सकते हैं, उस टारगेट पर पहुँच सकते हैं, उस मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। तो सवेरे उठते ही आप यही विचार करेंगे, वाह मनुष्य जीवन कितना सुंदर है, भगवान ने मुझे सुंदर जीवन दिया है, हाँ मुझे सुंदर आंखें मिली हैं, मुझे एक सुंदर मुख मिला है, हाथ पैर शरीर मिले हैं, इनसे मैं अपना भी कल्याण करूंगा और दूसरों का भी कल्याण करूंगा। मेरे पास सुंदर आंखें मिली हैं, इन सुंदर आंखों से मैं सुंदर दृश्य देखूंगा, इन सुंदर आंखों से मैं किसी की बुराई नहीं देखूंगा, मुझे कान मिले हैं अच्छी बातें सुनने के लिए, भगवान की बातें सुनने के लिए, कल्याणकारी बातें सुनने के लिए, इन कानों से मैं किसी की बुराई नहीं सुनूंगा, मुझे तो सबको प्यार बांटना है, मुझे अपने जीवन को सुंदर बना देना है और दूसरों के जीवन को भी गाइड करना है, उनको गाइड करना है कि वो भी कदम कदम पर अपने जीवन को सुंदरता से कैसे भरे। इस तरह के विचार आपको एक सुंदर अनुभूति देंगे। सवेरे सवेरे ही आपका मन प्रसन्नता से भर जाएगा और तब इन इच्छाओं के पीछे आप नहीं भागेंगे। इच्छाएं उसको ही अपना गुलाम बनाती हैं जिनका मन सुंदर विचारों से खाली है, सुखों से बिल्कुल रहित है, संतोष जिनके पास नहीं है। आप इन चीजों को बनाएं तो इच्छाएं या जो वस्तुएं आपको चाहिए, देखिए छोटा सा सिद्धांत है, जिस चीज का आप त्याग करेंगे वो आपके पीछे पीछे आएंगी। तो इच्छाओं के गुलाम नहीं, इच्छाओं को अपना गुलाम बना दें तो आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा।